ओम शांति। इस विषय पर मंथन करने से पहले हम थोड़ा सा मेडिटेशन की गहराई को देखेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ आए हैं राजयोग सीखने के लिए, है ना। और आप सब तो सेंटर पर पहले भी कनेक्टेड हैं, तो पहले भी कोर्स किया होगा। कभी कभी मेडिटेशन के टाइम हमें ऐसा लगता है कि मन एकाग्र नहीं होता है। कौन कौन आज सुबह आए थे 4 बजे? सभी वेरी गुड। अच्छा लगता है ना 4 बजे की एनर्जी में। यहाँ 4 दिन रहने से हम एक लाइफस्टाइल भी सीख रहे हैं। हम सिर्फ ज्ञान सुन नहीं रहे, मेडिटेशन कर नहीं रहे, हम एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और जब हम 4 दिन एक पर्टिकुलर दिनचर्या जी लेते हैं, तो उसके बाद वापस जाकर उसको कंटिन्यू करना ईजी है, क्योंकि अभी ऑलरेडी करके आए हैं। तो मेडिटेशन में हम आत्मा की तीनों फैकल्टीज को इंगेज करेंगे। आत्मा 3 रोल प्ले करती है। मन थॉट क्रिएट करता है, बुद्धि 2 काम करती है, बुद्धि विजुअलाइज भी करती है, बुद्धि निर्णय लेने का भी काम करती है। तो जैसे अभी अगर आप कोई भी थॉट क्रिएट करो, तो मन थॉट क्रिएट करेगी, बुद्धि उसकी पिक्चर सामने ले आएगी। अभी आप अपने परिवार को पीछे छोड़कर आए हैं, आप सिर्फ एक उनमें से किसी का भी नाम याद करो, आपको तुरंत उनका चेहरा दिखाई देना शुरू हो जाएगा, क्योंकि माइंड थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसका पिक्चर सामने लेकर आएगा। और तीसरी चीज, संस्कार क्या होता है कि जो हम देखेंगे, जो हम सोचेंगे, वो हम फील करना शुरू कर देंगे, और जब हम वो फील करना शुरू कर देते हैं, वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं अभी कि मेडिटेशन करना कैसे है, फिर हम उसको करेंगे भी, ठीक है। रेडी? सीधा होकर बैठेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन में ये प्रैक्टिस करें कि आंखों को बंद न रखें, क्योंकि हमें बचपन से ऐसे सीखा या सिखाया गया कि परमात्मा को अगर याद करना है या ध्यान में बैठना है तो आंखें बंद कर लो। लेकिन आंखें बंद कितनी देर करेंगे सारा दिन? अगर आप अभी अपने परिवार को याद करना हो, चलो 1 सेकंड में याद करो किसी को घर पे, किस किसने किया किसी को याद? आंख तो किसी ने बंद नहीं की, आंख तो बंद नहीं की, ऐसे ही बैठे थे नॉर्मल और याद आ गया। तो इसका क्या फायदा है? आप ऑफिस में बैठे हुए भी याद कर सकते हो, आप गाड़ी चलाते हुए भी याद कर सकते हो, आप खाना खाते हुए भी याद कर सकते हो, आप दूसरे से बातें करते हुए भी याद कर सकते हो। आंखें बंद करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक टाइम बाउंड एक्सरसाइज हो जाती है कि 10 मिनट बैठेंगे, 15 मिनट बैठेंगे। राजयोग मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, और जैसे जैसे वो कनेक्शन बढ़ता जाता है, बनता जाता है, परमात्मा की शक्तियाँ आत्मा के अंदर भरती जाती हैं। तो मेडिटेशन इज लाइक बैटरी कनेक्टेड टू पावर हाउस। बैटरी खुद को चार्ज करने की कोशिश करेगी तो बहुत समय लगेगा, और होगा भी नहीं, क्योंकि थोड़ा चार्ज करेगी, सारा दिन में डिस्चार्ज होगी, फिर थोड़ा चार्ज करेगी, फिर डिस्चार्ज होगी, हमने पहुँचना नहीं बहुत आगे जल्दी। लेकिन बैटरी कनेक्टेड टू पावर हाउस, तो बैटरी चार्ज होना शुरू करेगी। तो अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, कुछ कुछ थॉट्स आप सुनेंगे, आपको वो थॉट रिपीट करने हैं अपने माइंड के अंदर, और साथ साथ आपको उसका पिक्चर देखना है, ठीक है। इजी? सपोज एक थॉट क्रिएट की घर, पिक्चर ले आओ सामने, आ गया? हाँ। थॉट क्रिएट की ऑफिस, पिक्चर ले आओ सामने, आ गया? इजी? तो ये इजी है, आप करेंगे सीधा। ओके, चलो जो जो सुनते जाएंगे वो थॉट को अपना थॉट बनाते हुए उसको साथ साथ देखते जाएंगे। ध्यान रखें, आंखें ओपन रहें, अगर बहुत मुश्किल लग रही हो तो फिर आपको जैसे बंद करना हो आप वैसे बंद करें, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि नींद आती है, तो हो सके तो पूरा बंद नहीं करते उसको। इवन अगर बंद करना है तो पूरा बंद नहीं करते, और ओपन रख रहे हैं तो कोई भी एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं अगर डिस्ट्रैक्टेड फील होता है ना। पॉइंट ऑफ लाइट है उस पर भी फोकस कर सकते हैं, कोई भी एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सीधा होकर बैठें। अब हम एक छोटी सी जर्नी शुरू करते हैं। हम जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अपने आप को उस कुर्सी से उठते हुए देखो। ध्यान रहे, फोकस हमारा देखने पर है। जितना क्लैरिटी से देखेंगे उतना उसको फील कर पाएंगे। तो हम इस कुर्सी से उठते हुए इस हॉल के पीछे के दरवाजे से इस हॉल के बाहर चल रहे हैं। गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, हम गाड़ी में बैठकर इस कैंपस से बाहर माउंट आबू की पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। जिस तरह ऊपर आए थे बस उसी रास्ते नीचे जा रहे हैं। देखते जाएं अपने आप को गाड़ी में पहाड़ी से नीचे उतरते हुए। फील करो उस जर्नी को। और जैसे हम आए थे, कोई ट्रेन से आए, कोई फ्लाइट से आए, जैसे आए थे वैसे हम अभी वापस चलेंगे अपने शहर, अपने घर। तो जहां की जिधर की टिकट, जैसी टिकट बुक्ड है उस तरफ चलना शुरू करें। जिसने एयरपोर्ट जाना है वो एयरपोर्ट जाएंगे, जिसने स्टेशन जाना है वो स्टेशन जाएंगे। अपने आप को वहां पहुंचता हुआ देखें। और अपने आप को देखें कि हम अपने शहर में पहुंच गए हैं। अपने शहर को देखें और फिर जर्नी शुरू करें अपने घर की तरफ। आप कैसे जाते हैं घर? आप टैक्सी लेते हैं, कोई आपको लेने आता है? आप बस से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं? कैसे जाते हैं? वो वाला ट्रांसपोर्ट लें और घर की तरफ चलें। घर पर पहुंच गए हैं। अब अपने आप को घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखें और धीरे से दरवाजे को खोलते हुए घर के अंदर चलते हैं। दो दिन हो गए घर से निकले हुए। देखें घर में सब ठीक है? चेक द हाउस। सैटरडे का दिन है, सुबह का समय है, घर में कौन कौन है देखो, वो क्या कर रहे हैं। अपने घर का एक चक्कर लगा लें। सब ठीक है? घर में कोई है तो उनके पास जाकर बैठें, थोड़ा सा उनको सुनाएं, यहाँ क्या देखा, क्या सुना, क्या अनुभव किया। बातें करें उनसे, उनसे पूछें पीछे क्या हुआ दो दिन में। आपके घर में फ्रिज कहाँ रखा है उसकी तरफ चलें। फ्रिज को खोल के देखें, सब ठीक ठाक है अंदर? सामने एक पैकेट में फ्रेश आए हुए फ्रूट्स पड़े हैं। देखो आपको क्या पसंद आता है उसमें से। उसमें ऑरेंजेस भी पड़े हैं, एक उठा लेते हैं। गर्मी का मौसम है, उस संतरे को उठाकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठें और खाना शुरू करते हैं। अब सबको गुड बाय करते हुए हम वापस आते हैं उसी रास्ते, पहाड़ी से ऊपर ड्राइव करते हुए और हॉल में अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। ओके, ओम शांति। कौन कौन जा पाया यात्रा पर? सब जा पाए? किस किस का ध्यान बीच में कहीं और गया? हाँ, और जाकर फिर वापस लेकर आए उसको? हाँ, ये जरूर करना है। शुरू में ध्यान दूसरी तरफ जाएगा, पर गया तो गया, ऐसे नहीं करना है। जैसे एक बच्चे को आपने अपने पास बिठाया, वो उठकर कहीं जाने की कोशिश तो करेगा ही, तो वो जैसे उठकर जाने की कोशिश करता है तो हम क्या बोलते हैं बच्चे को? इधर आओ, बैठ जाओ। फिर वो दो मिनट बाद इधर जाने की कोशिश करेगा, फिर हम क्या कहेंगे? इधर आओ, बैठ जाओ चुपचाप। तो करके करके उस बच्चे को क्या करना होता है? डिसिप्लिन। इसी तरह इस मन को भी क्या करना है? डिसिप्लिन। तो कौन कौन को घर दिखाई दिया? वेरी गुड, दिखाई दिया। परिवार दिखाई दिया। किस किस ने संतरा खाया? किसको संतरा फील हुआ? तो ये प्रॉपर मेडिटेशन चल रहा था कि माइंड थॉट क्रिएट कर रहा था, इंटेलेक्ट उसको विजुअलाइज कर रहे हैं, और फिर हम उसको फील करते हैं। हम घर गए, हम फील करते हैं, हम उनसे मिले, हम फील करते हैं, हमने उनसे बात की और हमने फील किया कि हमने कुछ खाया भी और उसका टेस्ट भी हमें एक्सपीरियंस हुआ। तो ये पूरे प्रोसेस में वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये था कि मेडिटेशन करना कैसे है। क्या कहे करने था? फर्स्ट स्टेप क्या था? थॉट क्रिएट करने हैं। दूसरा स्टेप क्या था? उसको विजुअलाइज करना है। और तीसरा स्टेप क्या है? वो हम एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे। अब हम फिर से करेंगे। अब किसने जाना है ऊपर? मुझ आत्मा ने जाना है। तो थॉट वो करने हैं, विजुअलाइज आत्मा को करना है। और हम मेडिटेशन में कहाँ जाएंगे? अभी हम ये वाले घर गए थे, अब हम मेडिटेशन में कहाँ जाएंगे? आत्मा के घर जाएंगे। अभी हम ये वाली फैमिली से मिल रहे थे, अब हम किससे मिलने चलेंगे? अब हम किससे मिलने चलेंगे? अब हम परमात्मा से मिलने चलेंगे, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा क्योंकि वो हमारे पेरेंट हैं, तो हम उनको टाइटल से नहीं, रोल से नहीं, कर्तव्य क्वालिटी से नहीं, लेकिन रिश्ते से बात करते हैं। जैसे ही हम बाबा कहते हैं, हम बच्चा बन जाते हैं। और रिश्ता कैसे हो जाता है? पेरेंट और चाइल्ड का कनेक्शन बन जाता है। वो पिता हमारी परवरिश भी करते हैं, वो शिक्षक बनकर हमें सिखाते भी हैं। ठीक है, रेडी चलने के लिए ऊपर? तो उससे पहले हम छोटा सा देख लेते हैं कि आत्मा को विजुअलाइज कैसे करना है, उस घर को विजुअलाइज कैसे करना है, और परम धाम जो हम आत्माओं का घर है उसको विजुअलाइज कैसे करना है। तो दोनों तरफ स्क्रीन्स हैं, उस पर वीडियो दिखाएंगे कि कैसे देखना है। और ऐसे YouTube पे बहुत हैं, तो वो नहीं सोचना, लेकिन एक बार सिर्फ देखेंगे तो अभी करेंगे। फिर YouTube पे बहुत सारी मेडिटेशन कमेंट्रीज हैं, और जब आप वापस सेंटर पर जाएंगे तो आपको दीदी फिर से सिखाएंगे कि कैसे करना है। आ गया फर्स्ट वाला? आ गया। तो देखेंगे सेंटर ऑफ द फोरहेड, ब्रिकुटी के बीच आत्मा चमकता हुआ सितारा। बस बिल्कुल ऐसे हम भी विजुअलाइज करेंगे सेंटर ऑफ द फोरहेड, एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा, और जो वाइब्रेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं वो वाइब्रेशंस हमसे निकलते हुए रूम में जाती हैं, घर पे पहुंचते हैं, ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में जाती हैं एंड पूरी सृष्टि के वायुमंडल में चली जाती है। तो क्या देखा, प्रकृति के बीच आत्मा और फिर वाइब्रेशंस निकल के चारों तरफ फैल रही है। फिर हम सेकेंड वाला देखेंगे, हम देखेंगे कि अभी हम इस सीट से उठकर शरीर गया था अपने घर ना, बट परम धाम जाने के लिए शरीर नहीं जाएगा, तो मैं आत्मा उड़कर अपने घर की तरफ चलूंगी। दिख रहा है कैसे जा रही आत्मा इस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए परम धाम। जैसे आकाश दिखाई देता है नीले रंग का है, ऐसे ही परम धाम गोल्डन रेड लाइट है। और जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, वैसे परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट ही है। वो भी आत्मा है, लेकिन परम आत्मा क्यों है? एक, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो वो हम पवित्र आत्मा है, वो पवित्रता का सागर है। हम प्रेम स्वरूप आत्मा है, वो प्यार का सागर है। तो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, आत्मा निकलकर गई परम धाम अपने पिता के पास, परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। थर्ड चीज देखेंगे कि परमात्मा से शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं। जैसे हम सुबह सुबह धूप में खड़े हो जाते हैं तो सूर्य की किरणें, वो लाइट और शक्ति हमारे शरीर पर पड़ती हैं और शरीर के एक एक सेल को एनर्जाइज करती है। ऐसे ही एक लेजर बीम की तरह परमात्मा से निकलती हुई शक्ति, प्यार की शक्ति, शांति की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, वो मुझ आत्मा में भर रही है। तो मुझ आत्मा के बहुत कड़े कड़े संस्कार भी बदलने लग जाते हैं। मुझ आत्मा के अंदर पुराने कोई घाव हैं, पुरानी कोई बातें हैं, खत्म होने लग जाती हैं। ठीक है, तो पहले वहां जाना है और फिर क्या करना है, उस शक्ति को अपने अंदर भरना है। एंड लास्ट हम देखेंगे कि वो शक्ति को अपने अंदर भरने के बाद अगर हम वो शक्ति किसी और आत्मा को देना चाहते हैं, तो फिर हम उस आत्मा को भी परम धाम में इन्वोक करते हैं, बाबा से लेते हैं और उसको देते हैं, और फिर हम पूरी सृष्टि को भी देते हैं। इस समय सृष्टि पर कितना दर्द है, देनी है ना सबको शक्ति, और सृष्टि को भी देनी है, प्रकृति को भी देनी है। प्रकृति भी बहुत उथल पुथल से गुजर रही है, तो खुद के अंदर भरना और फिर खुद के अंदर भर के सृष्टि को भी देना, किसी आत्मा को आपको एनर्जाइज करना है उनको सहयोग और शक्ति देनी है उनको देना, और प्रकृति को भी देना। ठीक है, देख लिया कैसे विजुअलाइज करना है, एक बार फिर से देख लें चारों, 1, 1, 2, 3, 4। पहले आत्मा प्रकृति के बीच वाइब्रेशन फैलाते हुए, फिर आत्मा परम धाम की तरफ उड़ते हुए, बाबा के पास पहुंचते हुए, फिर परमात्मा की सर्वशक्तियां मुझ आत्मा में भरती हुई, और फिर मुझसे निकलकर विश्व को पहुंचते हुए। ठीक है, अब करेंगे हम, चलो सीधा होकर बैठेंगे, बहुत जेंटल रहना है, कोई प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर, इजी होकर करना है, एकदम से सब कुछ दिखाई नहीं देगा सबको, एंड दैट इज परफेक्टली फाइन। बहुत जेंटल रहना है, सिर्फ बहुत जेंटल, कोई प्रेशर नहीं होता है। इसके लिए कुछ दिनों का अभ्यास चाहिए होता है। जब हम अपने ये वाले घर गए थे, वहां जाना बुद्धि से आसान होता है क्योंकि परसों वहीं से आए थे, लेकिन परम धाम को छोड़े हुए हजारों वर्ष हो चुके हैं हमें, तो एकदम से वो जरूरी नहीं है सभी को स्पष्ट दिखाई दे, किसी को दिखाई भी देता है, किसी को नहीं दिखाई देता है, किसी को थोड़ा दिखाई देता है, इट डजेंट मैटर, उससे नहीं फर्क पड़ रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ उस प्रैक्टिस को क्या करते रहें, सिर्फ करते जाएंगे। तो बॉडी को रिलैक्स और अपने ध्यान को लेकर आए उस पॉइंट पर जहां तिलक लगाते हैं, और जैसे तिलक वैसे ही उसी जगह पर मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, देखें अपने आप को। सारा दिन जिसको देखते थे वो तो शरीर है मेरा, वो मेरा कॉस्ट्यूम है, मैं तो बस एक पॉइंट ऑफ लाइट हूं, शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। देखते जाए अपने आप को, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, गोल्डन लाइट, व्हाइट लाइट, और अपने आप को याद दिलाएं, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। इस थॉट को रिपीट करेंगे और खुद को देखते रहेंगे, ब्रिकुटी के बीच खुद को देखते रहेंगे और इस थॉट को रिपीट करेंगे जेंटली, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। जैसे हमने ये थॉट भी क्रिएट की, हमारे से प्योरिटी की वाइब्रेशन पूरे शरीर में फैलती है। देखें इसको सेंटर ऑफ द फोरहेड से एनर्जी पूरी बॉडी में रेडिएट कर रही है, जैसे एक लाइट फ्लो कर रही है पूरी बॉडी के थ्रू, शरीर के एक एक अंग के अंदर पवित्रता भरती जाती है। मेरी एनर्जी मेरी बॉडी को हील करने लगती है। फिर जेंटली याद दिलाएं खुद को, मैं शक्तिशाली आत्मा हर सिचुएशन में बिल्कुल शांत हूं, शांत स्वरूप आत्मा। ये एनर्जी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही है और मुझसे निकलकर ये वाइब्रेशंस इस हॉल में फैल रहे हैं। अब मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपने घर की तरफ चलती हूँ। कितना मैंने उस घर को याद किया है आज तक, हमेशा जब मुश्किल आई तो ऊपर की तरफ ही देखा था और सोचा था कि जो ऊपर वाला है वो मेरा ध्यान रखेगा, हमेशा ऊपर ही देखा था। आज उस ऊपर की दुनिया में चलते हैं और जिस ऊपर वाले को ढूंढ रहे थे उससे मिलने चलते हैं। तो देखें अपने आप को, मैं आत्मा इस हॉल से बाहर उड़ते हुए शहर के ऊपर और ऊपर पृथ्वी दिखाई देती है, नीचे मैं आत्मा आकाश के तत्व को भी क्रॉस करते हुए और ऊपर अब तो पृथ्वी भी नहीं दिखती। अब मेरे चारों तरफ सिर्फ रेड लाइट है। देखे लाइट ही लाइट है। मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूं। यहीं से तो आई थी सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करने। बहुत सारी आत्माएं हैं इधर। देखो लाइट 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 पॉइंट्स ऑफ लाइट। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और मेरे सामने वो सुप्रीम लाइट, परम आत्मा, शक्तियों में परम, पवित्रता के सागर, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान। देखे उनकी शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैल रहे हैं, जैसे सूर्य की किरणें फैलती हैं। आज दिन तक जाना ही नहीं कि मैं बिल्कुल उनकी तरह हूं। उनके समीप आकर बैठ जाए। वो माता पिता है, मैं बच्चा हूं। वो प्यार का सागर है, मैं आत्मा जैसी हूं, जो हूं। परमात्मा मुझे प्यार करते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं। मन में कोई भी बात है, कोई प्रश्न है, कोई बोझ है, कोई गिल्ट है, कोई ऐसी बात है जो किसी से नहीं कही, या कोई भी दर्द है, कुछ भी है, बाबा से बात करें, उन्हें सब बताएं। उनकी शक्तियों को अपने अंदर भरते रहें और हर बात बता दें। कोई चिंता है बता दें, कोई प्रॉब्लम है बता दें। किसी से रिश्ते में प्रॉब्लम है बता दें। कोई मुझे तंग कर रहा है बता दें। बच्चा कैसे बताता है, कोई प्रश्न है, कोई निर्णय लेना है, उनके सामने रखते हैं और कह दें, आपको ही बताना होगा कि मुझे क्या करना है। मुझे नहीं पता क्या करना है, आप बताएंगे मुझे कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल समीप जाकर बैठ जाएं और वो सर्व शक्तियों को अपने अंदर भरता हुआ देखें, जैसे लेजर बीम परमात्मा से निकल मुझ आत्मा में भर रहे हैं। अगर किसी को कोई शक्ति देनी है तो उस आत्मा को भी वहां बुला लें। परमात्मा से लेते जाएं, उस आत्मा को देते जाएं। शक्ति खुद में भरें, उनको देते जाएं। और वो शक्ति अपने अंदर भरते हुए पूरी सृष्टि पर फैला दे। परम धाम में है हम ऊपर सर्वशक्तिवान के साथ, नीचे सृष्टि है, तो एक शावर की तरह वो शक्तियां, शांति और प्यार पूरी सृष्टि पर फैल रहा है। हर आत्मा को शांति, हर आत्मा को परमात्म प्यार मिल रहा है। विश्व बदलता जा रहा है। हर एक शांत है, खुश है। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं, उसी चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए पृथ्वी की ओर। इस हॉल में त्रिकुटी के बीच अपनी सीट पर, सीट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ओम शांति। ठीक है, क्लियर? कैसे करना है, किस किस को थोड़ा 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 कर पाए, जाना जाना थोड़ा थोड़ा। हाँ, बस इसमें सिर्फ एक ही वर्ड ऐड करना होता है और वो वर्ड है प्रैक्टिस। एंड प्रैक्टिस मतलब जस्ट रोज करना है। जब जब हम सिर्फ इतना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ इस प्रकृति के बीच, एंड हम अपने आप को देख रहे हैं पॉइंट ऑफ लाइट इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, हम सोल कॉन्शियस हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे विकार, हमारे वाइसेस, वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे और हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी। आज से पहला होमवर्क, दिन में कई बार और दिन में बार बार, ये सिर्फ छोटा सा प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा हूँ पॉइंट ऑफ लाइट, मैं आत्मा हूँ पॉइंट ऑफ लाइट। अभी क्या है, ऑपोजिट बहुत नेचुरल हो गया है कि मैं बॉडी हूँ, मैं रोल हूँ, पोजिशन हूँ। तो जो हम सोचेंगे कि मैं हूँ, वो ही हमारा व्यवहार बनेगा। आप सोचेंगे आप पेरेंट हैं, तो पेरेंट कॉन्शियसनेस से व्यवहार करेंगे। आप सोचेंगे आप एक ऑफिस में हैं, ऑफिसर हैं, आप उस कॉन्शियसनेस से व्यवहार करेंगे। आप इस स्मृति में रहेंगे कि मैं एक पवित्र प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, आप उस स्थिति से काम करेंगे, उस स्थिति से व्यवहार करेंगे। तो सबसे पहली प्रैक्टिस ये करनी है, ठीक है? ईजी प्रैक्टिस। क्या करना है, क्या करना है? चलते फिरते काम करते हुए बीच में 2 सेकंड रुककर मैं आत्मा हूँ, और सिर्फ थॉट नहीं क्रिएट करने, साथ में क्या करना है, विजुअलाइज करना है। फर्स्ट होमवर्क। ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, बहुत देर भूला जाता है पूरे दिन के अंदर, फिर सडनली याद आता है, ओ 4 घंटे बीत गए, हमने तो किया ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसीलिए है बहुत ईजी, बहुत ईजी है करने में, लेकिन हम इतना ईगो कॉन्शियसनेस की दुनिया में रह रहे हैं कि वो वायुमंडल के हम प्रभाव में है कि हमें भूल जाता है। इसीलिए हम एप्लीकेशन रखते हैं फोन पर, जिससे हर घंटे के बाद 1 मिनट का म्यूजिक प्ले होता है, और उस समय तो हमें रुक के याद करते ही करते हैं। ठीक है, इजी। सेकेंड चीज, दूसरे को मिलेंगे तो दूसरे को मिलते हुए भी याद रखना कि हम किसको मिल रहे हैं, हम किसको मिल रहे हैं। मैं आत्मा को मिल रही हूँ, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा रिश्ते में? बच्चों को बिठाएंगे, जो बच्चे भाग रहे हैं, पेरेंट कहाँ है, पेरेंट कहाँ है इनका? देखो ऐसा होता है, जब बच्चा बिछड़ जाता है ना माँ बाप से, तो भटकना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हम हो गए, हम बिछड़ गए, वो पेरेंट उधर है, बच्चा इधर पहुंच गया, पेरेंट पीछे पीछे आ रहा है लेकिन बच्चा और फास्ट फास्ट आगे जा रहा है। ये बिल्कुल हमारी लाइफ है, ये है। वो देखो, वो पेरेंट आ रहा है पीछे से, लेकिन वो बच्चा तो कितनी फास्ट, ये ऐसे है, भगवान ने हमारे लिए ये सीन दिखाया कि तुम भी यही करते रहते हो ऐसे सारा दिन पर, है ना, ऐसे भाग गया। हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपने माता पिता से कितने दूर हो जाते हैं, और जब दूर होते हैं फिर ठोकर खाते हैं, भटकते रहते हैं, सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, कर लेते हैं, बाह्य तो कर लेते हैं लेकिन आंतरिक शक्ति घटती जाती है। और जैसे ही वो बच्चा फिर मिलेगा ना पेरेंट्स से, तो क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ, एक तो पेरेंट की सारी शक्तियाँ, वो प्यार, वो सपोर्ट, वो सारा एक्सपीरियंस करेगा, वो एनर्जी मिल जाएगी और वो केयर मिलेगी, और फिर परमात्मा को याद और परमात्मा से कनेक्शन, ऐसे सिर्फ मेडिटेशन के टाइम नहीं करना है, सारा दिन के काम कारोबार में। सपोज एक बच्चे को रोड क्रॉस करनी है, अभी देखो ये छोटा सा बच्चा है ना, अगर ये शहर की सड़क पर हो और इसको रोड क्रॉस करनी है तो बहुत मुश्किल है इसके लिए रोड क्रॉस करना। पहले तो ये घबरा जाएगा सड़क को देखकर, सड़क के ट्रैफिक को देखकर, लेकिन उसको उस साइड जाना तो है ही, तो वो आ जाएगा रोड पर, मुझे क्रॉस करना है, फिर इधर देखेगा, इधर देखेगा, डरेगा, फिर स्टार्ट करेगा, फिर अटक जाएगा, फिर वापस आएगा, पता नहीं कितनी ही देर लग जाएगी उसको, और फिर भी शायद क्रॉस कर भी ना पाए। लेकिन अभी सपोज ये बच्चा पेरेंट का हाथ पकड़ ले, दोनों का, मम्मी पापा इस तरफ और वो हाथ पकड़ ले, फिर वो कैसे क्रॉस करेगा, फिर वो कैसे क्रॉस करेगा, फिर उसको लगेगा कि वो क्रॉस कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ एक ही काम करना था, क्या काम करना था, हाथ पकड़ना था। जैसे ही परमात्मा का हाथ और साथ पकड़ लिया, लगेगा सब बड़े बड़े काम हम कर रहे हैं लेकिन हम कर नहीं रहे होंगे, वो अपने आप होता जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उस जर्नी को क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे। अगर एक बच्चा हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करेगा तो उसको मजा आएगा रोड क्रॉस करने में, वो उस तरफ जाएगा और बोलेगा वापिस एक बार करते हैं, उस तरफ जाते फिर वापिस इधर आते हैं। तो अकेले चैलेंजेस क्रॉस करते हैं तो चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े हैं लाइफ के इस समय, लेकिन उसका हाथ और साथ पकड़ लेते हैं, मतलब उसके साथ कनेक्शन बना के रखते हैं। उसके महावाक्य को रोज इसलिए हम सेंटर पर जाकर जरूर सुनते हैं क्योंकि भगवान हमें बताता है ऐसे सोचो, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे करो बात आएगी, आप ऐसे करो, बिल्कुल गाइडेंस जैसे एक पेरेंट बताता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो पहले तो हम सेंटर पे जाके रोज महावाक्य सुनते हैं जिससे वो गाइडेंस मिलती है, और योग में कनेक्शन और हाथ और साथ मिलता है। और फिर सारा दिन, थर्ड होमवर्क आपको ये करना है कि सारा दिन कोई भी काम करने से पहले एक सेकंड बोलो, बाबा आप बताना क्या करना है, अभी हम उनसे मिलने जा रहे हैं, आप देख लेना कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाना है। छोड़ना उस पर नहीं है, करना हमें है, लेकिन निमित्त बन के करना है कि वो करवा रहा है, आप मुझे बताना क्या सही है। पहले हम कहते थे भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा वो काम कर दे, भगवान मेरा काम नहीं कर सकता है क्योंकि काम किसको करना है। इट्स लाइक आपका बच्चा आपको बोले मैं सोने जा रहा हूं आप मेरा होमवर्क कर देना, तो आप होमवर्क नहीं कर सकते उसका, लेकिन आप उसको होमवर्क कराने के लिए अपने साथ बिठा सकते हैं, आप उसको होमवर्क कराते टाइम गाइड कर सकते हैं, आप उसको होमवर्क कराते टाइम सिखा सकते हैं। लेकिन होमवर्क किसको करना है, उस बच्चे को ही करना है। आज दिन तक हम भगवान को कहते थे ये काम करा देना, ये काम करा देना, ये ऐसा नहीं, काम कराना किसका कर्म है, काम करना मेरा कर्म है, सही मैं कर रही हूं आत्मा, उसके लिए हम राय लेकर, सपोर्ट लेकर। तो वो अभी एकदम से नहीं पता चलेगा, लेकिन जब धीरे धीरे रोज जाएंगे सेंटर पर और रोज एक रिश्ता बनता जाएगा, फिर आपको एक्सपीरियंस होगा हर स्टेप पे वो पावर मेरे साथ है, हर स्टेप पे वो सपोर्ट मेरे साथ है। और रिजल्ट क्या पता चलेगी, अगर पता चलेगा कि वो पावर मेरे साथ है तो फिर चेंज क्या आएगा व्यवहार में, सारा दिन क्या चेंज आएगा, हाँ, निश्चिंत हो जाएंगे, वेरी गुड। वो बच्चा जो रोड क्रॉस कर रहा था वो निश्चिंत था, और क्या हो जाएगा, हाँ जी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, वेरी गुड। और कैसे रहेंगे, लाइट रहेंगे, निडर रहेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इस जीवन की जर्नी को एंजॉय करना शुरू करेंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब बड़ी बात पे आएगी ना लाइफ में कोई बड़ी बात पे, तब भी एकदम स्टिल शांत होकर वो सारे तरीके जो सीख लिए हैं और जो कनेक्ट बना लिया है उसके साथ बिल्कुल पीसफुल होकर उसको क्रॉस करेंगे। तो छोटी बातों में स्ट्रेस का तो कोई कॉन्सेप्ट बचेगा नहीं, लेकिन बड़ी बात में भी स्ट्रेस नहीं होगा, बड़ी बात में भी स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि कौन झुला के लेके जा रहा है अक्रॉस द प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन सिर्फ उसको बोल देने से ऐसे नहीं होने वाला है। रोज वो शिक्षा को लेना, रोज उसको स्टडी करना, दिन में प्रैक्टिस करना, फिर वो कनेक्ट बनाना, अपनी हर बात उसके साथ शेयर करना। और अगर आप अपने बच्चों को अभी से सिखा दें तो उनका तो रिलेशनशिप और इजी बन जाता है, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, ईगोलेस होते हैं, वो ऑलरेडी सोल कॉन्शियसनेस के नजदीक हैं, तो उनको कनेक्ट करना और भी इजी होता है। तो 3 होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क मैं पॉइंट ऑफ लाइट प्रैक्टिस करते रहना, सेकेंड होमवर्क दूसरे को जिसको मिलेंगे वो भी कौन, वो भी आत्मा, कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा, कोई नहीं, कौन ऊंचा कौन नीचा, कोई नहीं, कौन अमीर कौन गरीब, कोई नहीं, अलग अलग धर्म, कोई नहीं, ये सब कुछ तो बॉडी में आने के बाद अलग 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 अलग, अभी अभी शरीर छोड़ेंगे, कोई और घर, कोई और रोल, कोई और पोजीशन, कोई और रिलीजन, कोई और देश, कहीं भी पहुंच सकती है आत्मा। तो हमेशा कोई भी इंटरेक्शन शुरू करने से पहले मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूं। रिस्पेक्ट, प्योरिटी, इक्वालिटी, उस पर रिश्ता शुरू होता है। और तीसरा होमवर्क, परमात्मा से, मीठे बाबा से कनेक्ट होते रहना, अपनी हर बात उसको बताते जाना और हर बात पूछ कर करते जाना। आने वाले समय आसान नहीं है, बहुत सारी बातें सृष्टि पर होनी है, हर स्टेप पर निर्णय लेना होगा, लेकिन क्योंकि इतनी उथल पुथल दुनिया में हो रही होगी, हमें ये नहीं है पता कि जो हम डिसीजन लेंगे वो राइट निकलेगा या नहीं राइट निकलेगा। तो 3 तरह से डिसीजन लिए जा सकते हैं। 1, मेरा लॉजिकल डिसीजन, ये ठीक नहीं है, ये ऐसे करना है, लॉजिक, एंड लॉजिकल डिसीजन राइट निकलता है। लेकिन जब बातें कुछ थोड़ी सी अलग होती हैं तो लॉजिक की जगह इंट्यूशन वाला डिसीजन यूज करना है, मन को शांत रखना है, अंदर से क्या आवाज आती है कि क्या करना चाहिए। तो अंदर से आवाज मतलब ये उथल पुथल का शोर शांत हो जाएगा, तो मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आत्मा अपने आप को आंसर दूंगी, ऐसे करना है। लोग कहेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, क्योंकि लोग लॉजिकल सोचेंगे आपके चारों तरफ। लेकिन किस किस को एक्सपीरियंस हुआ है इंट्यूशन का कभी ना कभी? इंट्यूशन का आंसर राइट होता है? किसको उसको फेथ है इंट्यूशन का आंसर राइट होता है? लॉजिकल फिर भी गलत हो सकता है, और लॉजिक गलत होने के चांसेस इसलिए भी होते हैं क्योंकि हम अभी की सिचुएशन के हिसाब से लॉजिकल सोचते हैं, कल वो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है, कोई बात ही चेंज हो जाती है, तो मेरा लॉजिकल डिसीजन नॉट नेसेसरी हमेशा राइट होता है। तो सेकंड डिसीजन मेकिंग है इंट्यूशन। तो आने वाले समय में इंट्यूशन को ज्यादा यूज करें, लॉजिकल डिसीजन तो AI दे देगा आपको। अब कल मैंने 4-5 दिन पिछले हफ्ते किसी ने एक आर्टिकल लिखा था, वो आया था न्यूज में, कि मैंने AI से पूछा 5 साल के बाद कौन से शहर में रहना अच्छा होगा। बोला AI ने उसको लंबा दे दिया, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा। तो ये AI ने किस बेसिस पे दिया होगा, किस बेसिस पे दिया होगा, आज क्या सिचुएशन है दुनिया की, देश की, शहर की, और लॉजिकली 5 साल बाद क्या होगा, कहाँ की इकोनॉमी, कहाँ का ट्रैफिक, कहाँ का मौसम। तो हम क्या लॉजिकल सोचेंगे अभी इसके बाद, हम क्या लॉजिकल सोचेंगे इसके बाद? लॉजिकल काम तो सारा किसने करना है? तो AI ने उसको लंबा एक अच्छा सा आंसर दे दिया, लंबा डिटेल के साथ, इतना डिटेल कोई नहीं हमें दे सकेगा। तो अब हमें लॉजिकल सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि 5 साल बाद जो शहर उसने बोला है वो वही वाला ठीक होगा? नहीं, क्योंकि दुनिया तो हर रोज बदल रही है, फटाफट फटाफट फटाफट। कुछ साल पहले जो देश लग रहा था पावरफुल, आज वो बदल गया। कुछ साल पहले जो देश कमजोर लग रहा था, वो देश ऊपर आ गया। 5 साल तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए इस समय पर लॉजिकल डिसीजन तो AI दे देगा आपको। अब लॉजिक पे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करो, अब थोड़ा सा एफर्ट करो, इंट्यूशन डिसीजन कैसे आएगा, और उसके लिए रोज मेडिटेशन करना है। बिजनेस में इंट्यूशन डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको आपके बच्चे को कौन से कॉलेज में डालना है वो इंट्यूशन डिसीजन लेना पड़ेगा, देश में पढ़ाना है विदेश में पढ़ाना है, देश में कौन से शहर में पढ़ाना इंट्यूटिवली सोचना पड़ेगा क्या राइट है बच्चे के लिए। तो सेकेंड डिसीजन मेकिंग है इंट्यूशन। थर्ड डिसीजन मेकिंग है कि मैंने बाबा से कह दिया कि आप बताना कि मुझे क्या करना है, मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं, मेरी अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं कि ये होना चाहिए थोड़ा सा ये होना चाहिए। इसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। सरेंडर जैसे एक बच्चा, एक ऑप्शन होता है बच्चा पेरेंट आप पेरेंट के पास आकर कहे मुझे ये चाहिए, पेरेंट बोलेगा नहीं आपके लिए ठीक नहीं, बोलता मुझे ये ही चाहिए, तो फिर पेरेंट बच्चे को वो दे देता है जो बच्चे को चाहिए। दूसरा ऑप्शन होता है बच्चा बोलता है ये तीन ऑप्शन हैं लेकिन मुझे ये चाहिए, बट फिर भी आप बताओ कि कौन सा ठीक है। ठीक है, तो तीन ऑप्शन रखेगा, उसमें वो माता पिता को बोलेगा मुझे ये ऑप्शन नंबर एक ए पसंद है बट फिर भी आप बताओ कौन सा है। और तीसरा है कंप्लीट सरेंडर कि मुझे मेरे बारे में सोचना नहीं है, आप बता दो मेरे लिए क्या सही है, मैंने करते जाना है। उसको कहते हैं कंप्लीट सरेंडर। ये नहीं कि आप कर दो, नहीं, आप बता दो मैंने करते जाना है। तो ये रिश्ता बनाना है भगवान के साथ, एक लॉजिकल डिसीजन, एक इंट्यूशन डिसीजन, तीसरा परमात्मा की टचिंग और कैचिंग पावर। आपको लगता है भगवान से आंसर मिल सकते हैं? भगवान से आंसर मिल सकते हैं जब करेंगे तब तो पता चले। अगले साल आके बताना, इस साल अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना, अगले साल आके बताना। जैसे टेलीपैथी कैसे होता है, टेलीपैथी होता है, सबने टेलीपैथी एक्सपीरियंस किया है। आप किसी को याद करो वो ही वाली बात आपको फोन करके बता देते हैं, आप फोन उठाओ वो पहले फोन लग जाता है। अगर आपने कभी स्कूल में एक्सपीरियंस किया हो या कॉलेज में या अभी भी कि आपका कुछ खाने का मन हो आप घर पहुंचे वही खाने की चीज बनी होती है, होता है ऐसे कि नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है हर बार जो हमने सोचा वही बना होता है? कैसे होता है ये? क्योंकि जो हमने सोचा वो वहां तक वो थॉट पहुंच जाती है और उनको भी वही थॉट आते हैं कि आज ये बनाना है, इसको टेलीपैथी बोलते हैं। वो कोइंसिडेंस नहीं होता है, कोइंसिडेंस एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, कितनी बार कोइंसिडेंस होगा, उसको टेलीपैथी कहते हैं। तो ये किसके और किसके बीच हुई टेलीपैथी? आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हुई। कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, मैसेज किया नहीं, बॉडी को यूज किया ही नहीं, सिर्फ मैंने थॉट क्रिएट की और वो थॉट उस आत्मा ने कैच की, इसको टेलीपैथी कहते हैं। इसमें बॉडी का कोई रोल नहीं था। अगर आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है तो आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है? आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है तो आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है? सिर्फ ऑप्शन सोचो, हो सकती है कि नहीं, जब होगी तब तो एक्सपीरियंस हो जाएगा। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, मतलब आपने थॉट क्रिएट किया उधर तक पहुंचा, उन्होंने थॉट क्रिएट किया और आप तक पहुंचा, इसको टेलीपैथी बोलेंगे। हो सकता है, कौन सा ज्यादा इजी है, आत्मा आत्मा टेलीपैथी, आत्मा परमात्मा टेलीपैथी? आत्मा आत्मा टेलीपैथी, आत्मा परमात्मा टेलीपैथी? क्यों आत्मा परमात्मा क्यों इजी है? कनेक्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, क्यों ज्यादा अच्छा हो जाएगा? अच्छा, क्योंकि वो हमारे परमात्मा हमारे माता पिता हैं। हाँ, इसलिए भी तो वो तो रेडी बैठे आंसर देने के लिए, हमें सिर्फ क्वेश्चन पूछना है। दूसरी चीज ये भी होती है, अगर सपोज आप अपने बच्चे के लिए यहां से एक थॉट क्रिएट करो, है वो वहां बैठे हैं अपने शहर में और आपको उनको थॉट भेजनी है ये काम कर दो, अगर आप करो ना, ये टेलीपैथी से हो सकता है, हमें फोन उठा के लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और इसको एक्सपेरिमेंट करके इस पावर को बढ़ाते जाओ, दिस इज ऑल्सो अ पावर। इसको जितना यूज करते जाएंगे वो पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे अगर आपके दरवाजे की घंटी बजे, एकदम से नहीं खोलना, पहले थॉट कौन आया बाहर कैच करो, जस्ट लेट योर माइंड से कौन आया है बाहर, एंड आपके माइंड को वो आंसर आएगा। एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, तीसरी बार ठीक होने लग जाएगा, फिर और ठीक होने लग जाएगा, और फिर हर बार ठीक होने लग जाएगा। घंटी बजेगी फोन की, देखना नहीं किसका फोन है, कैच करो किसका फोन है ये। विच मीन्स स्टार्ट यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड। जितना उस पावर को यूज करेंगे वो पावर क्या होती जाएगी, वो पावर बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए जब अभी सपोज आप यहां से एक थॉट क्रिएट करो अपने बच्चे के लिए, आपकी थॉट वहां पहुंच जाएगी, लेकिन अगर उसका फोन यहां एंगेज्ड है, मतलब वो बहुत ज्यादा कुछ सोच रहा है, स्ट्रेस पे है, तो आप तो डायल कर रहे हैं लेकिन लाइन इज बिजी, वो आपकी थॉट तब कैच कर लेंगे जब उनकी लाइन कैसे होगी, थोड़ी सी साइलेंट। इसीलिए अगर किसी को कुछ कहना है ना, जब वो सोए हुए हैं तब वो थॉट डाल दो। इसीलिए सुबह का 4 बजे का टाइम बहुत अच्छा होता है लोगों को थॉट देने का, क्योंकि उस टाइम वो क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, हम अपनी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में होते हैं। कल सुबह जब आप मेडिटेशन कर लेंगे, कोई भी बात जो आपका कोई कहना नहीं मान रहा, कोई प्रॉब्लम है, कोई रिश्ते में है, कोई बात, सुबह के समय मेडिटेशन करने के बाद बाबा से सारी शक्ति लेकर परम धाम में उनको बुलाकर, उनको वो शक्ति देकर, उनको वो थॉट डाल दो। उस समय वो सोए हुए हैं तो उनकी लाइन क्लियर है, उन तक पहुंचना शुरू हो जाएगा मैसेज। हर रोज करना शुरू करो। कुछ बातें यहां से करने से नहीं हो रही आजकल, तो ये वाली कम्युनिकेशन को यूज करो कि रोज उसको एक थॉट भेजते जाओ। तो इसीलिए आत्मा टू आत्मा टेलीपैथी थोड़ा सा कभी कभी अटकती है, क्योंकि उस लाइन क्लियर नहीं हो तो वो कैच नहीं करेंगे हमारा सिग्नल, लेकिन वहां तो स्ट्रेस होता नहीं, वहां लाइन हमेशा कैसी है, वहां तो लाइन भी नहीं है, वो हॉटलाइन है, एकदम से लग जाता है, एकदम से लग जाता है। इसीलिए सिर्फ प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए आपकी, फिर आपको आंसर मिलेगा। सरेंडर करो, और जब आप इसको रिश्ता बनाते रहे, और प्रॉब्लम की वेट नहीं करने के, प्रॉब्लम के दिन पूछेंगे, जरूरी नहीं होता प्रॉब्लम के दिन दूसरे वहां से रिप्लाई आ जाए। रिश्ता कैसे बनता है, जब हम कब बात करते हैं, रिश्ता कब बनता है, जब हम कब बात करते हैं, हर रोज बात करते हैं, हर बात करते रहते हैं, फिर तो ऐसी स्थिति पर पहुंचेंगे आप पूछेंगे भी नहीं और सामने से जवाब आ जाएगा। एक हमारी सेंटर पर दीदी है गुजरात में, 2000 में भुज में अर्थक्वेक हुआ था, 2000 में हुआ था ना, जनवरी 26 को, तो उस टाइम वो 10th स्टैंडर्ड में थे और सुबह 9 बजे का टाइम था, और उसके मम्मी पापा सेंटर पर गए हुए थे मुरली क्लास के लिए, वो सेकंड फ्लोर पे था शायद घर। तो अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या करना होता है सेकंड फ्लोर पे, हाँ बताएं, लॉजिकल थॉट, क्या करना है अगर अर्थक्वेक आता है तो, बाहर जाना है 100%। इसमें तो रुक के कोई सोचने की भी बात नहीं है ना, और उतना टाइम किधर होता है, बैठ के रुको सोचो या बाबा को पूछो या किसी को फोन करो, उस टाइम तो वो सब भी नहीं था, तो वो एकदम से बाहर जाने ही लगी थी। तो उसको इतना स्ट्रांग उधर से एक थॉट आया, टेबल के नीचे जाके बैठ जाओ, इलॉजिकल है बिल्कुल, टेबल के नीचे जाके बैठ जाना ऑन अ सेकंड फ्लोर, एब्सोल्युटली इलॉजिकल है, लेकिन एक्सपीरियंस था कि ये जो थॉट है ये मेरी थॉट नहीं है, ये थॉट कहां से आई है, उधर से आई है, वो सीधा जाके। उसके बाद हम अपना इंटेलेक्ट यूज नहीं करते बिल्कुल भी, जब हमें वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना ये वो वाले, हम बिल्कुल उसके ऊपर सोचते नहीं। अभी कोई बोलेगा कुएं में डाल के डाल दो तो हम वो भी कर देंगे अभी, क्योंकि हमें इतना ज्यादा वो एक्सपीरियंस हो गया है कि ये किसकी थॉट है, तो वो उसने सोचा ही नहीं उस पर, वो जाकर टेबल के नीचे बैठ गई। 2-2.5 मिनट में तो जो होना था वो हुआ, उनके घर में टूटा फाटी ऐसे बहुत कुछ हुई थी, लेकिन घर मोर और लेस ठीक था। और जब वो बाहर निकली तो वो जहां बाहर जाती वहां दूसरी जगह से कुछ बहुत ज्यादा गिर गया था वो पूरा उधर। तो ऐसे होता है, तो हम नहीं भी पूछेंगे ना अगर उस टाइम पर, लेकिन अगर हमने पहले रोज बात बात बातें करते हैं, कनेक्शन बना होता है, तो भी हमें वहां से आंसर आएगा। आंसर हम सबको आते हैं, लेकिन हमें कैच करना आना चाहिए, कैच करना आना चाहिए और परख लेना चाहिए कि ये वहां से संकल्प आया है, और इसको तो हम आंख बंद करके स्वीकार कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आने वाला समय है, सिचुएशंस आएंगी, दुनिया में आएंगी, देश में आएंगी, लाइफ में आएंगी, बहुत कुछ होगा, लॉजिकल डिसीजन हमेशा राइट नहीं निकलेगा, है ना। जैसे अभी भी जो समय चल रहा था, भाई फ्लाइट बुक करें नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, गए तो वापस आ पाएंगे कि नहीं आए, तो बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए लॉजिकल नहीं वर्क करेगा. तो इसलिए मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है, इंट्यूशन पावर को यूज करना है. और फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाते रहे तो अपनी हर बात उनसे करो, आपकी बात के समय आपको पूछे बिना आंसर मिलेगा. लेकिन रिश्ता बना के रखना है. तो दुनिया में लोग इम्पोर्टेंट लोगों से रिश्ता बनाकर रखते हैं, भाई पता नहीं कब काम आए. बहुत सारे विजिटिंग कार्ड भी इकट्ठे करके रखते हैं, बहुत सारे नंबर भी सेव करके रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उस टाइम वो व्यक्ति अवेलेबल होता है मदद करने के लिए. जरूरी नहीं है उस टाइम वो हमारा फोन उठाते हैं. जरूरी नहीं है उस टाइम वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं. तो सबसे बना के रखो, लेकिन एक से जरूर बना के रखो. ठीक है? इसलिए आज से बोलना बंद कर दें कि मेरे पास उसके लिए क्या नहीं था, टाइम नहीं था. क्योंकि फिर जब उस टाइम जब प्रॉब्लम आएगी तो बोलेंगे बाबा बाबा प्लीज हेल्प करो, तो ये कनेक्शन बनेगा नहीं उस टाइम. इसलिए नहीं कि भगवान मदद नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि मुझे ही प्रैक्टिस नहीं होगी कि कैसे वो करना है. ठीक है? डन. तीन होमवर्क, आत्मस्थिति, दूसरे से कम्युनिकेट करने के टाइम सोल कॉन्शियस स्थिति, और तीसरा परमात्मा से अपनी हर बात करना अपार्ट फ्रॉम सुबह और दिन की मेडिटेशन. जब ये ध्यान में आ गया कि मैं आत्मा हूं, तो ये भी ध्यान में आ गया कि मेरे आसपास सारे जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, वो भी कौन है? वो भी है आत्मा. हमारे को रिश्तों में एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल लगता है कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, मेरी नेचर ऐसी क्यों है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चे की लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, सारे बच्चे तो ठीक है, मेरे बच्चे के सामने क्यों ये प्रॉब्लम आई. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड पर आते रहते हैं. लेकिन जब मैं आत्मा हूँ ये समझ में आ गया, हर क्वेश्चन का आंसर फिट होना शुरू हो जाता है. तो यहाँ पर आए, अटेंशन रखें, पॉइंट ऑफ लाइट यहाँ रखे होंगे, रखें यहाँ. यहां मैं एनर्जी हूं, इधर नहीं हूं, अंदर हूं, इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, लेकिन मैं एनर्जी हूं. एक सेकेंड आएगा जब ये शरीर काम करना बंद कर देगा, और ये एनर्जी क्या करेगी? इस शरीर को छोड़ देगी. मृत्यु किसकी होगी? मृत्यु किसकी होगी? शरीर की होगी. शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में खत्म हो जाएगा. पांच तत्वों का बना हुआ, पांच तत्वों में लीन हो जाएगा. आत्मा एनर्जी है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो फर्स्ट थिंग लिख दो, मेरी कभी मृत्यु होती ही नहीं. किसकी मृत्यु होती है? शरीर की. आत्मा अजर अमर अविनाशी, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती. लेकिन जब ये शरीर काम का नहीं होता, जैसे अगर हमने जो ड्रेस पहनी है ये फट जाए, या ये पुरानी हो जाए, ये कोई काम की नहीं रहे, तो हम थोड़ी फट गए. कौन फटा? ड्रेस फटी. फिर हम क्या करते हैं? उस ड्रेस को छोड़ देते हैं और हम नई ड्रेस पहन लेते हैं. दुखी होकर पहनते हैं, दुखी होकर पहनते हैं नई ड्रेस. कौन कौन खुश होकर पहनता है नई ड्रेस? वेरी गुड. और अगर आपके आसपास कोई अपनी पुरानी ड्रेस फट जाती है और वो नई ड्रेस पहनते हैं, तब आप कैसे होते हैं? बोले, आपको ड्रेस, नई ड्रेस मिली तो आप हैप्पी थे. हाँ, और दूसरे को मिली है तो आप अभी कुछ आंसर नहीं कर रहे. क्यों? दूसरे को नई ड्रेस मिले तो क्या करना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लें इसको. खुद भी इस शरीर को खुशी खुशी छोड़ना है जब छोड़ना पड़ेगा. कौन कौन हैप्पी जाना चाहेगा आगे? कल तो हाथ उठाया था हैप्पीनेस चाहिए, अभी हैप्पी जाना है. हैप्पी जीना नहीं है, लेकिन हैप्पी जाना जरूर है. कैसे जाएंगे हैप्पी जब तक हैप्पी जिएंगे नहीं? क्यों हैप्पी जाना चाह, क्यों हर आत्मा में ये इनेट होता है कि मुझे खुश जाना है? क्योंकि भले हम सारा दिन में याद नहीं रखते, लेकिन हमें पता है कि जब मैं आत्मा जाऊंगी तो मेरी स्थिति मेरे साथ जाती है, और ये स्थिति मेरे साथ आगे की जर्नी. जैसे हम ये ड्रेस में हैं, अभी ये ड्रेस फट गई तो हम ये ड्रेस को छोड़ेंगे, नई ड्रेस पहनेंगे. हम तो वही रहेंगे ना, हम तो वही रहेंगे. आपने कल एक अलग ड्रेस पहनी थी, आज आपने एक अलग ड्रेस पहनी है, लेकिन आप तो वही हैं ना. कुछ चेंज हुआ कल और आज में हमारे अंदर? नहीं, सिर्फ ड्रेस चेंज हुई. इसी तरह मुझ आत्मा की ये ड्रेस खत्म हो जाएगी तो मैं आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करूंगी, मेरी एक नई ड्रेस वो 9 मंथ्स में अंदर क्रिएट होती है. वो ड्रेस क्रिएट किस बेसिस पे होती है? वो ड्रेस भी किस बेसिस पे क्रिएट होती है? मैं आत्मा कौन से संस्कार और कर्म लेकर गई हूं, इसीलिए आप देखो हर एक की ड्रेस अलग अलग है, ठीक है। तो मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश करती हूं, मेरी नई ड्रेस क्रिएट होती है, थोड़े महीने में एक बेबी आता है, सब लोग कहते हैं बच्चा बच्चा, सब लोगों को लगता है एक परफेक्ट न्यू क्या है। वो परफेक्ट न्यू सिर्फ ड्रेस होती है, उस ड्रेस के अंदर जो है वो न्यू है। वो ड्रेस जिसने पहनी है वो न्यू है? नहीं, सिर्फ ड्रेस न्यू है। अब अपने बच्चों को देख लें, वो न्यू नहीं है, सिर्फ उनकी ड्रेस न्यू है। वो कितने ओल्ड हैं? वो कितने ओल्ड हैं? वो इस ड्रेस से पहले एक अलग ड्रेस में थे, उस ड्रेस से पहले एक अलग ड्रेस में थे, उस ड्रेस से पहले एक अलग ड्रेस में थे। इसी तरह हम भी इस ड्रेस से पहले एक अलग ड्रेस में थे, एक अलग ड्रेस में थे, एक अलग ड्रेस में थे। अब जो आपके आसपास ऑफिस में काम करते हैं, जिनको आप एक रोल के थ्रू देखते हैं कि एक मैनेजर है तो ऐसे होना चाहिए, उसको ऐसे काम करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन वो मैनेजर सिर्फ एक रोल है। उस रोल को प्लेन करने वाली जो सोल है, जो आत्मा है, उसके संस्कार कैसे हैं? तो हम अपने हर रोल को किसके थ्रू प्ले करेंगे? जो हमारे संस्कार हैं। तो वही रोल अलग अलग लोग अलग अलग तरह से प्ले करेंगे, यस और नो? जैसे ये जो लंबे लंबे सीरियल चलते हैं टीवी पर, तो कभी कभी कोई एक्टर बीच में से सीरियल छोड़ देता है, तो वो किसी और एक्टर को लेकर आते हैं। रोल सेम होता है, स्क्रिप्ट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन क्या कोई भी एक्टर पहले वाले एक्टर की बिल्कुल तरह कर पाता है उस रोल को? नहीं। कोई उससे बेटर कर पाता है, कोई उससे कम कर पाता है, लेकिन एक्टर का रोल और स्क्रिप्ट सेम है, लेकिन एक्टर ही चेंज हो गया। इसी तरह आपके आसपास अलग अलग रोल है, आपके पास अलग अलग रिश्ते हैं, आपके दो बच्चे हैं, सेम रोल है कि दोनों बच्चे हैं, दोनों आपने ही पैदा किए, आपने ही पाले, आपने ही बड़े किए, क्या वो अपने बच्चे का रोल एक जैसा प्ले करते हैं? आप कहेंगे बच्चा है, कहना मानना चाहिए, चलो इतनी छोटी सी बात, क्या दोनों इक्वली कहना मानते हैं? नहीं, कोई कम कोई ज्यादा। दोनों को हमारा ध्यान रखना चाहिए जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे, क्या दोनों इक्वली ध्यान रखते हैं अपने पेरेंट का? नहीं, कोई तो सारा दिन सेवा करता है, कोई तो परवाह ही नहीं करता है। लेकिन हम कहेंगे दोनों ही तो मेरे बच्चे हैं ना, तो दोनों को ध्यान रखना चाहिए था। दोनों बच्चे हैं, लेकिन दोनों क्या करके आए हैं? अपने अपने संस्कार लेकर आए हैं। किसी के अंदर केयरिंग का संस्कार है, आपको उसको बोलना पड़ेगा बस कर, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अभी तू जाके तेरा काम कर, क्योंकि वो इतना केयर करेंगे। और दूसरे को आपको कहना पड़ेगा कुछ नहीं तो हफ्ते में एक फोन ही कर ले एक बार। इतना एक्सट्रीम होता है या नहीं होता है? होता है। अब हम कहेंगे क्यों, ये मेरा बच्चा क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि वो बच्चा सिर्फ इस कॉस्ट्यूम में आपका रोल प्ले कर रहा है बच्चे का, लेकिन वो कौन है? वो भी सोल है, वो भी सोल है, और दोनों की जर्नी बिल्कुल अलग है। तो आज से क्यों ये याद रखना इम्पोर्टेंट है? ताकि अलग अलग रिश्तों में अलग अलग लोगों को देखते हुए उनके ऊपर प्रश्नचित्त नहीं करना, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। उसका एक ही आंसर है कि ये आत्मा एक लंबी जर्नी पर है, इस जर्नी पर क्या 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 उसने देखा है हमें पता नहीं है, वो आज जो है वो अपनी उस लंबी जर्नी का रिजल्ट है। कुछ संस्कार उनके बहुत अच्छे हैं, कुछ संस्कार उनके थोड़े से मुश्किल हैं, कुछ संस्कार उनके नेगेटिव भी हैं। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आत्मा अपने साथ दो चीजें लेके जाती हूं, एक संस्कार दूसरा कर्म। रिपीट करें, एक संस्कार दूसरा कर्म। अब यही संस्कार और कर्म के साथ हम आत्माएं एक दूसरे को पहले भी मिल चुके हैं, तो जो आपके वो दो बच्चे हैं ना, उनको आप पहली बार नहीं मिल रहे हैं, आप पहले भी मिले थे, अभी भी मिल रहे हैं और आगे भी। एक बार कट्ठे रिपीट करते हैं, जो हमारे साथ आज लोग हैं क्लोज सर्कल के अंदर, क्लोज सर्कल सिर्फ फैमिली नहीं होता, कुछ फ्रेंड्स बहुत क्लोज होते हैं, कोई रिलेटिव्स बहुत क्लोज होते हैं, कोई कलीग बहुत क्लोज होता है, और कार्मिक अकाउंट क्लोज होता है। अगर किसी के साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कार्मिक अकाउंट है वो भी क्लोज ही है, मतलब जिसके साथ अच्छा है वो भी पिछला कार्मिक अकाउंट है, जिसके साथ बहुत मुश्किल है उसको भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बिना बात के क्यों मुश्किल हुआ हुआ ये। तो रिपीट करते हैं, हम पहले भी इकट्ठे थे, अच्छे से बोलो यहां रिकॉर्डिंग करनी है, हम पहले भी इकट्ठे थे, हम आज भी इकट्ठे हैं, और हमें अच्छा लगे या लगे हम फिर इकट्ठे होने वाले हैं। तो इसलिए इस बार सारे कार्मिक अकाउंट को ठीक कर लेते हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हमारे कार्मिक अकाउंट सारे कैसे होंगे, उनके साथ बहुत अच्छे होंगे। इसको कहते हैं आत्मा को हैप्पी जाना आगे, मतलब अपनी सारी गांठों को क्या करना है, सारी कांठों को क्या करना है, खोलना है, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार करना है, उनका व्यवहार उनका, उनका व्यवहार उनका, उनका व्यवहार उनका कर्म, उनका कर्म उनका भाग्य, मेरा व्यवहार मेरा व्यवहार मेरा कर्म, मेरा कर्म मेरा भाग्य। तो वो जो दो बच्चे हैं, एक बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है और दूसरा बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहा। आइडियली तो दोनों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक और रीजन भी होता है, और उसमें भी जैसे दो पेरेंट्स है ना, अब ये फोर आत्माओं का कार्मिक कनेक्शन है, दो पेरेंट्स तो दो आत्माएं वो हो गए, दो बच्चे ये दो आत्माएं वो हो गई। अब उस दो बच्चे में भी किसी का कनेक्शन पिता के साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है, किसी का कनेक्शन मदर के साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है, ऐसा होता है यस? एक बच्चा बहुत निडर होके जीता है, एक बच्चा पेरेंट्स से बहुत डरता है, ऐसा भी होता है। इसी तरह ये रीजन क्या है इसका, एक हम चारों अपने अपने संस्कार लाए हैं, दूसरा रीजन ये है हम चारों पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब जब मिले थे पिछली बार तब पेरेंट चाइल्ड के रूप में नहीं मिले थे, तब हम कोई भी कनेक्शन के रूप में मिल सकते हैं। तो पिछली बार क्या एनर्जी बनी वो कंटिन्यू हो रही है। तो सपोज ये मदर सोल और ये बच्चा सोल, इन दोनों का कार्मिक अकाउंट पिछली बार बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। अब जब वो मिलेंगे उनका कनेक्ट ऐसे हो जाएगा, उनकी कभी किसी बात में मतभेद होगी नहीं, उनकी कोई आर्ग्यूमेंट होनी नहीं, उनका रिलेशनशिप इतना स्मूथ चलेगा बिल्कुल भी। लेकिन दूसरे बच्चे का उसी मदर के साथ कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, तो फिर वो पेरेंट क्वेश्चन मार्क करता है, इसके साथ इतना अच्छा है इसके साथ क्यों नहीं है। ये कर करके हम गांठें खोलने की बजाय, हम गांठें खोलने की बजाय क्या कर देते हैं, गांठें और बना देते हैं। इसीलिए मैं आत्मा हूं, ये आत्मा है, ये भी संस्कार कर्म लेकर आई, मैं भी संस्कार कर्म लेकर आई, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पहले मिल चुके हैं, और जो पिछली बार हमने किया था उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। जो अच्छे चल रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल, अच्छा करते जाओ अच्छा ही चलता जाएगा। जहां थोड़ा सा संघर्ष है वहां क्या करना है, वहां क्या करना है इस बार, जहां मतलब ऐसे खिटपिट चलती रहती है या उससे भी ज्यादा कोई तंग कर रहा है एक दूसरे को, कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या करना है इस बार, इस बार उसको ठीक करना है। कौन करेगा वो ठीक, दोनों नहीं करेंगे। अगर हम इंतजार करेंगे कि दोनों करेंगे तो हम इंतजार करते रह जाएंगे, और अब आजकल तो पता भी नहीं कब शरीर छोड़ देंगे। पहले ना क्या क्या करते थे, 20-30 साल पहले तक जब उम्र शरीर की बढ़ जाती थी, सपोज 90 या उसके ऊपर जाते थे, तो तैयारी की जाती थी हाउ टू डाई, इस बारे में बात की जाती थी घर में कि आपको किसी से कुछ कहना है, आपको पीछे कुछ कहना है, आपको किसी से मिलना है, मतलब प्रिपरेशन कि अब 90, 95, 100 हो गए तो कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं, तो किसी को बुलाना है, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ बोलना है, वो एक तैयारी होती थी। तो वो तैयारी होने की वजह से आत्मा जाने से पहले अपने काफी कार्मिक हिसाब किताब को क्या कर लेती थी, काफी हद तक ठीक कर सकती थी, और एज भी टाइमली डेथ होती थी तो अपने हिसाब किताब भी ठीक कर लेती थी, अपने शरीर की पूरी आयु भी उसमें वो जी लेती थी। तो आत्मा का शरीर छोड़ना थोड़ा सहज हो जाता था, क्योंकि सब कुछ कैसे कर लिया, जैसे मेरा बिजनेस सारा ऊपर पूरा हो गया, यहां पर अभी मुझे नेक्स्ट जाना है। अभी क्या हो रहा है, अचानक, कभी भी अचानक जरूरी नहीं है आयु भी पूरी जी हो उस शरीर के अंदर, अचानक अचानक। अब अचानक अचानक होने के टाइम हम प्रिपेयर नहीं करते फिर अपने आप को। तो राजयोग से हम जाने के लिए रेडी रहते हैं। इट्स नॉट कि हम जा रहे हैं कल, नो, इट्स जस्ट दैट जब जाएंगे आराम से चले जाएंगे, क्योंकि पक्का पता है कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। और जीवन जीने के तरीके में अपनी गांठों को क्या करके रखना है, कैसे खोलेंगे गांठे, गांठे कैसे खोलेंगे, पहले तो खिटपिट में आना नहीं किसी के साथ। सामने वाला आपसे ठीक से नहीं बात कर रहा, आप प्यार से बिहेव कर लो। वो फिर भी ठीक से नहीं कर रहा, आप फिर से करते रहो। वो फिर भी नहीं ठीक कर रहा, आप रोज सुबह अमृत वेले के बाद उसको परमात्मा को याद करके उसको शक्ति और संकल्प दो। रोज रात को सोने से पहले उसने कितना भी आपको आज तंग किया हो व्यवहार में, आप सोने से पहले उसको क्षमा करो। सबसे फर्स्ट फोर्थ होमवर्क हमारा ये, सोने से पहले सारे दिन के कर्म को चेक करके ऐसे सोना है कि हम उठने नहीं वाले हैं। किसी को क्षमा करना है, किसी से क्षमा मांगना है, किसी को कुछ कहना है, तो रोज का रोज ही कर लेना है अपना। उससे दो चीजें होती है, एक अगर सच्ची में बाय चांस नींद में चले गए तो भी सब रेडी सेट है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्लीप बहुत गहरी होगी उससे, क्योंकि आपने सारी गांठों को क्या किया सोने से पहले, खोल दिया। आत्मा लाइट होकर सोती है, नहीं तो जो दिन में होता है ना हमारे साथ, वो नींद में बहुत प्रोसेसिंग चलती है उस सारी इमोशन की, उन बातों की, उन व्यवहार की। जैसे सपोज अभी चलते चलते इन्होंने मुझे कुछ कह दिया, फिर उससे मेरी थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई, मेरे पास टाइम नहीं है रुक कर उसको प्रोसेस करने के लिए। मैं काम करते करते मुझे बुरा भी लग रहा है, लेकिन मैं काम भी करते जा रही हूं। रात को जब मेरे सारे काम खत्म हो जाते हैं और मुझे लगता है मैं सो गई, उस समय आत्मा वो सारी इमोशंस को प्रोसेस करती है। और तब अगर वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं, कोई कर्म वैसे हैं, तो हमें नींद अच्छी नहीं आने वाली है, क्योंकि नींद में वो उथल पुथल ये बातें वो सारी याद आने वाली हैं। आप सुबह उठेंगे ना, अगर आपको सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील हो रहा, मतलब नींद में जो प्रोसेसिंग हुई है वो अच्छी नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी। और वो क्यों प्रोसेसिंग अच्छी नहीं थी, कल का दिन ठीक नहीं था। लेकिन जब वो रोज सेम होने लगता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि एक्चुअली नींद अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम रोज ही प्रोसेसिंग वैसे कर रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट होमवर्क, पहले तो दिन में ध्यान रखें, उलझे नहीं, याद रखें हर एक आत्मा है, अपने संस्कार लेकर आया, अपने कर्म, और ये मेरा उनके साथ का कर्मों का हिसाब किताब, तो कोई मेरे साथ गलत नहीं कर रहा है, ये मेरा ही कार्मिक अकाउंट है। पकड़े बॉल हाथ में, एक हरेक हरेक बॉल को पकड़े हाथ में। परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते हैं, अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिख रहे होते तो ये सृष्टि स्वर्गी होती हमेशा, बदलती ना उससे। हमारा भाग्य कौन लिख रहा है, मेरे कर्म। तो कैच करें एक बॉल को पकड़े, ये हमेशा सारा दिन में याद रखना है, मेरी हर थॉट, मेरा हर वर्ड, मेरा हर बिहेवियर। तो सोच, शब्द, व्यवहार, ये एनर्जी है जो हम क्रिएट करते हैं और ये बाहर जाती है, तो ये है मेरा कर्म। क्या होगा, बॉल फेंक दी, जैसे आपने सोचा आपने बॉल फेंक दी, जैसे आपने कुछ बोला आपने बॉल फेंक दी, जैसे आपने कुछ किया आपने बॉल फेंक दी। उसके बाद आप कितना भी सोचो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, हमने बॉल ऑलरेडी फेंक दी। हम ये कर सकते हैं उसके बाद 10 अच्छी बॉल फेंक दें तो थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना, 10-1। लेकिन अगर हम सिर्फ सोचते रह जाएं कि मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि गिल्ट क्रिएट करेंगे तो भी नेगेटिव बॉल ही है। गिल्ट नेगेटिव बॉल है, क्योंकि हम दर्द में जाते हैं गिल्ट से। तो जो मैंने सोचा, बोला, किया, वो मेरा कर्म है। अब आपने जो बॉल फेंकी वो कहां हिट होगी, वो इस दीवार पे हिट होगी, और दीवार से हिट होकर कहां जाएगी, वापस आएगी। कैसे आएगी, जैसे फेंकी थी, दिस इज लॉ ऑफ कर्मा, जैसे फेंकी थी, जिस स्पीड पर, जिस डायरेक्शन पर, बस उसी तरह वापस आने वाली है। तो अब वापस क्या आता है, अब हाथ ऐसे रखें, वापस क्या आता है, मेरी लाइफ में सिचुएशंस, सिचुएशंस ऐसे आती है ना, व्यवहार कैसे होता है ऐसे जाता है, सिचुएशन कैसे आती है ऐसे आती है। तो सिचुएशन आ रही है किसी का मेरे साथ बिहेवियर, वो भी कैसे आ रहा है, सामने से आ रहा है। मेरे शरीर का कोई तबीयत, वो भी कहां से आ रहा है, सामने से आ रहा है। काम कारोबार में कभी कभी ऊपर नीचे, कहां से आ रहा है, सामने से आ रहा है। प्रकृति उथल पुथल कर रही है, कहां से आ रही है, सामने से आ रही है। तो ये बॉल जा रही है और ये बॉल आ रही है, कंट्रोल में है। ये बॉल जा रही है, वो बॉल आ रही है, कौन से मेरे कंट्रोल में है, जो हम फेंक रहे हैं। और अगर हम अच्छी वाली फेंकते हैं तो कौन सी आएगी, सिर्फ अच्छी आएगी। तो पावर कब है मेरी, फेंकने के टाइम, ठीक है। तो फिर से हाथ बॉल पकड़े, आप ऐसे सोच समझ के अब फेंकना। इसीलिए हर कर्म सोच कर करना कि यही वापस आने वाला है। ऐसे ही चार लोगों के बीच बैठकर किसी और की निंदा कर दी, बॉल फेंक दी, दूसरा निंदा कर रहा था, मैंने नहीं की, लेकिन मैंने सिर्फ हाँ राइट इतना किया, बॉल फेंक दी। मैंने राइट भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ नॉड किया तो भी बॉल फेंक दी। मैंने नॉड भी नहीं किया लेकिन मैं बैठ के सुनती रही दूसरे की ग्लानी, तो भी मैंने बॉल फेंक दी। और हम कहते मैंने आज सारा दिन में सारे राइट कर्म किए, फिर हम कहते मैंने जीवन में सारे अच्छे कर्म किए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ भी अनफेयर नहीं हो रहा है, जो बॉल जा रही है वही बॉल आ रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई बॉल नेक्स्ट मिनट वापस आती है, कोई बॉल 10 दिन बाद वापस आती है, कोई बॉल 20 साल बाद वापस आती है, कोई बॉल 100 साल बाद वापस आती है। जो थोड़े दिन बाद वापस आ जाए फिर भी याद रहता है कि मैंने फेंका था, वापस आया। क्या चीज, अच्छा दूसरे लोग बॉल फेंक रहे हैं, उसको हम क्या करें, उसको हम सुन के क्या करें, उनको हम सुन के हम अच्छी बॉल फेंके। सपोज आपने सुना दुनिया के उस कोने में किसी ने किसी के साथ कुछ किया, अगर आपने यहां बैठ के सोचा ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करता है, ये व्यक्ति तो गलत है, ये व्यक्ति ये है, अब ये करते करते हमने कौन सी बॉल्स फेंक दी, हमने कौन सी बॉल्स फेंक दी। तो इसीलिए एक सेकेंड में परमात्मा से कनेक्ट करके, परमात्मा आपकी शक्तियां इनके साथ है, इनका हर कर्म एक्यूरेट है, इनका हर करण हर निर्णय सही है, वरदान दे दो। देवता क्या करते हैं, देवता क्या करते हैं, याद रखना है दुनिया में भी जो हो रहा है उसकी एनर्जी को लेना नहीं है, उसको भी एनर्जी देना है, नहीं तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट होगा भी नहीं, लेकिन हम उस कार्मिक अकाउंट के अंदर क्या हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो हमारी सोच तो चलेगी, लेकिन किस क्वालिटी की सोच चलेगी, वो हमारी पावर किसके पास है, हमारे पास है। तो अगर हम किसी को चेंज कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए, हम किसी को राय दे सकते हैं तो हमें करना चाहिए, लेकिन दूसरे देश में कोई कर रहा है तो हम उसको थोड़ी राय दे सकते हैं, हम उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलते रहेंगे ये ऐसे कर रहे हैं, ये वैसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो भी हमारी कौन सी एनर्जी क्रिएट हो गई। इससे अच्छा क्या थॉट क्रिएट करो कि परमात्मा की शक्ति इनके पास, इनका निर्णय सही होगा, इनका कर्म सही है। ब्लेसिंग दे, आगे बढ़े। हर रोज न्यूज में बहुत कुछ दिखता है, हर रोज बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, आने वाले समय में और सुनने को मिलेंगी और दिखेंगी। इस सृष्टि चक्र का ये कलयुग का अंतिम समय है, तो जितने कार्मिक अकाउंट बने होंगे ना पूरे चक्र के अंदर, वो सारे एंड में सामने आने ही है। कौन सा समय लग रहा है सृष्टि पर, सत्ययुग चल रहा है, नहीं क्या चल रहा है, फिर कलयुग भी अति है। कलयुग तो बहुत सालों से चल रहा है लेकिन कलयुग भी अति, अति के बाद क्या होता है, अंत। तो इस कलयुग का अंत होना है, सृष्टि का अंत नहीं होता। जैसे कल हम दिन में बैठे थे, फिर दोपहर हुई, फिर शाम हुई, फिर रात हो गई, फिर रात का अंत हो गया, रात ही थोड़ी चलती रही, फिर रात का अंत हो गया, लेकिन रात का अंत मतलब सुबह की शुरुआत। तो इसी तरह एक बड़ा साइकिल है, वो भी साइकिल की तरह ही टाइम चलता रहता है। पहले सुबह होती है, उसको सत्ययुग कहते हैं, सत्ययुग में कौन सी आत्माएं रहती हैं? चलो एक पिक्चर, इसको विजुअलाइज करते जाना, जो सुनेंगे ना उसको एक मिनट के लिए विजुअलाइज करते जाना। आत्मा कहाँ रहती थी? परम धाम में। किसके साथ? परमात्मा के साथ। और जब आत्मा वहां रहती थी तो आत्मा कैसी थी? कंप्लीट प्योरिटी, कंप्लीट, एक्चुअली परमात्मा की तरह, कंप्लीट प्योरिटी, कंप्लीट प्यार, कंप्लीट शांति, कंप्लीट। बैटरी कैसे? फुल चार्ज्ड। आत्मा बैटरी नहीं है लेकिन उसको विजुअलाइज हम वैसे करते हैं कि बैटरी कैसे? फुल चार्ज्ड। अब इसको विजुअलाइज करो, परम धाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है, कैसी है वो आत्मा? परफेक्ट, प्योर, पावरफुल, फुल चार्ज्ड। उसको बॉडी कैसी मिलेगी? जब आत्मा इतनी परफेक्ट है तो शरीर कैसा होगा उसका? जितना आत्मा में प्रॉब्लम्स आई तभी तो शरीर में बीमारियां आनी शुरू हुई ना। आत्मा परफेक्ट होगी तो शरीर कैसा होगा? तो 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सत्युगी देवता, उनके शरीर के लिए क्या कहा जाता है? निरोगी कंचन काया। आज भी जब हम देवी देवताओं की मूर्ति स्थापन करते हैं मंदिर में, अगर उस मूर्ति पे इतना भी कुछ होता है ना, इतना, तो भी वो मूर्ति स्थापन नहीं की जाती, क्योंकि देवी देवताओं का शरीर कभी खंडित नहीं था। क्यों खंडित नहीं था? क्योंकि आत्मा कैसी थी? परफेक्ट। तो आत्मा परम धाम से नीचे आएगी, शरीर बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। आत्मा परफेक्ट, शरीर परफेक्ट, तो प्रकृति कैसी होगी? परफेक्ट। क्योंकि सब कुछ परफेक्ट है, उसको स्वर्ग कहा जाता है, उसको सत्युग कहा जाता है, उसको हेवन, जो भी अलग अलग वर्ड्स है लैंग्वेजेस में वो कहा जाता है। वो भी एक दुनिया थी लेकिन उसमें हर आत्मा कैसी थी? बैटरी चार्ज। हर आत्मा डिवाइन आत्मा थी। अब अपने आप को उस जर्नी पर देखना है। हर आत्मा कैसी थी? डिवाइन आत्मा थी। उसको कहते हैं सनातन देवी देवता धर्म। वो रिलीजन नहीं था, वो सिविलाइजेशन थी। सारे ही वैसे थे। महाधर्म क्या था आत्मा का? पवित्रता धर्म था, शांति धर्म थी, प्यार धर्म था। हर एक वैसे ही जीता था, इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। तो परमात्मा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ष हम एक शरीर में रहेंगे उस समय पर, और फिर उस शरीर को छोड़ेंगे और दूसरा लेंगे। जब सत्युग में आत्मा एक शरीर छोड़ेगी दूसरा लेगी तो रोएगी? रोएगी? आसपास के लोग रोएंगे ना? इट विल बी अ सेलिब्रेशन कि एक शरीर छोड़ा, नेक्स्ट शरीर लिया। फिर वो एक शरीर छोड़ेगी दूसरा लेगी, एक शरीर छोड़ेगी दूसरा लेगी। सत्युग में सोल कॉन्शियस नेचुरल होगा, रोल कॉन्शियस नहीं होंगे, सोल कॉन्शियस होंगे। ऐसे करते करते सृष्टि की सुबह से सृष्टि की दोपहर पे आ जाएंगे, जिसको त्रेता युग कहते हैं। उधर एक ऐसा लेबल नहीं आएगा दिस इज त्रेता युग, ऐसा नहीं है, बट बैटरी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो देवी देवता ही है। तो 16 कला संपन्न सत्युग है, 14 कला त्रेता युग है, पर तो भी देवता ही हैं वो सारे। हाथ कैसे हैं? देने वाले हाथ, मतलब हाथ से ऐसे नहीं चलते वो सारा दिन, वो यहां से दे रहे हैं सिर्फ। फिर एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा चलेगा, और आधा साइकिल पूरा हुआ, दोपहर के बाद क्या आएगा? दोपहर के बाद क्या आएगा? शाम आएगी, उसको द्वापर युग कहते हैं। तो सत्युग त्रेता युग आधा साइकिल, द वर्ल्ड इज परफेक्ट, परफेक्ट दुनिया, परफेक्ट। फिर द्वापर युग से, क्योंकि मैं आत्मा इतने टाइम से इस शरीर को यूज कर रही हूं, तो धीरे धीरे शरीर के साथ अटैचमेंट होने लगती है और हम धीरे धीरे भूलना शुरू कर जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, और हम बॉडी कॉन्शियसनेस की फर्स्ट फेज में। आप आज की तरह नहीं, आज तो भूल ही गया कि मैं आत्मा हूं, आज तो मैं हूं ही शरीर, उतना बॉडी कॉन्शियस फिट हो गया है। पर द्वापर युग के शुरू में बिल्कुल स्टार्टिंग की, बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टार्टिंग होती है। जैसे ही बॉडी कॉन्शियसनेस की स्टार्टिंग होगी, विकार की शुरुआत हो जाएगी। तो काम विकार, सत्युग त्रेता युग में कोई काम विकार नहीं होता, पवित्रता है वहां, संपूर्ण पवित्रता की जीवन है। द्वापर युग के स्टार्टिंग से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, लेकिन आज जितनी नहीं, कितनी? इतनी होगी, इतनी, इतनी, इतनी सी, इतनी सी। और जैसे वो होगा तो शरीर पर भी उसका असर पड़ेगा, तो समाज थोड़ा सा क्या होने लगेगा, बिखरेगा। और ये द्वापर युग में परम धाम से और आत्माएं इस सृष्टि पर आएंगी समाज को संभालने के लिए, जिनको हम कहेंगे धर्म स्थापक। वो धर्म स्थापन करने नहीं आते, वो मनुष्य आत्मा को वापस अपने धर्म पर लेके जाने के लिए आते हैं। और वो आके क्या सिखाते हैं, शांति सिखाते हैं, प्यार सिखाते हैं, ब्रदरहुड सिखाते हैं, भाईचारा सिखाते हैं। वो ये सिखाते हैं कि हम सब भाई हैं, हम किसके बच्चे हैं, उंगली कहाँ करते हैं, वो ऊपर करते हैं। हम छोटी सी गलती क्या करते हैं, जिसकी तरफ वो पॉइंट कर रहे हैं उससे कनेक्ट करने की जगह हम किससे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जो हमें मैसेज देने आया था उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि जो हमें मैसेज देने आए तो वो बहुत प्योर आत्मा होती है जो मैसेज देने आए हैं, हम उनको ही देखते हैं और उनसे कनेक्ट होते जाते हैं। और इसीलिए हम यूनाइट होने की जगह, क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डिवाइड हो जाते हैं कि मैं ये रिलीजन, आप ये रिलीजन, आप ये रिलीजन। तो भी अच्छा ही चल रहा था, ऐसे करते करते हम कलयुग में आ गए। सोल पावर क्या हो गई, और कम हो गई। विकार क्या हो गए, और बढ़ गए। शरीर पे बीमारियां बढ़ गई, प्रकृति और तमोप्रधान होती गई। ऐसे करते करते हम कलयुग की अति पे आ गए, जो कि अब का युग है। अब तो याद ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं। तो सोल कॉन्शियसनेस क्या हो गई, बिल्कुल फिनिश्ड, प्योरिटी हो गई खत्म। बैटरी क्या हो गई, कितनी, नहीं डिस्चार्ज पूरी नहीं होती बट कितनी हो गई, एकदम ऐसे। अब कलयुग का एंड मतलब किसकी शुरुआत, तो दुनिया इस समय काफी डरी हुई है कि आगे इस दुनिया का क्या होने वाला है, भविष्य क्या है इस सृष्टि का। तो 1936 में ब्रह्मा बाबा, जिनका हम फोटो देख रहे हैं यहाँ, तो उनको उस समय दादा लेखराज कहते थे, वो डायमंड मर्चेंट थे, उनके 6 बच्चे थे, 12 गुरु किए थे जीवन में, बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति उस समय के समाज के। उनको परमात्मा ने ये साक्षात्कार कराया कि कैसे इस विश्व में युद्ध चल रहा है, कैसे भारत में ग्रह युद्ध चल रहा है और कैसे प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। तो उनको बहुत वैराग्य आ गया, तो उन्होंने अपना वो डायमंड का बिजनेस पैकअप कर दिया, अपने पार्टनर के साथ उसको डिवाइड कर लिया और वो अपने एकांत में अपनी इस जर्नी पर चलना शुरू हुए। फिर उनको दूसरा साक्षात्कार हुआ कि आत्माएं सृष्टि पर आती हैं ऊपर से और देवी देवताओं का शरीर ले रहे हैं। तो उससे उनको पता चला कि दुनिया फिनिश नहीं हो रही है, दुनिया क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है। और जो दुनिया आने वाली है वो बहुत ब्यूटीफुल दुनिया आने वाली है, लेकिन उनको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर उनको थर्ड साक्षात्कार हुआ जो निराकार परमात्मा का ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। फिर उसके बाद निराकार परमात्मा, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर, उनको निमित्त बनाकर ये ज्ञान हमको देना शुरू किया। 3 ज्ञान दिए, आत्मा, परमात्मा और समय। तो सारा ज्ञान जो आप यहाँ सुनते हैं और जब आप सेंटर पर जाते हैं तो मुरली सुनते हैं या कल जाएंगे परसों तो सुनेंगे, वो ब्रह्मा बाबा ने नहीं सुनाया है, वो किसी और ने नहीं सुनाया है, वो किसने सुनाया है, वो निराकार परमात्मा शिव बाबा ने ही सुनाया है। फिर तो वो लंबा इतिहास है, आपको सुनना चाहिए, उस पर किताबें भी हैं, उस पर फिल्म भी है, देखें उस फिल्म को पूरा। उस फिल्म का नाम भाग्य विधाता है, 2 घंटे की फिल्म को जरूर देखना, वो यूट्यूब पे भी है। वो देखने से आपको पूरा वो इतिहास 1936 से ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए 69, कैसे ये यज्ञ स्थापन हुआ, कैसे ये संस्था स्थापन हुई, वो सब कुछ दिखाई देगा। और तो ये कार्य परमात्मा के द्वारा चल रहा है। और फिर 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा ने अपना देह त्याग कर दिया। अब अगर ब्रह्मा बाबा का ये कार्य चल रहा था तो उनके जाने के बाद कार्य क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो फाउंडर चला जाता है तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा, है ना। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा का कार्य था ही नहीं, वो सिर्फ निमित्त थे। कार्य किसका चल रहा था, निराकार परमात्मा शिव बाबा का। तो परमात्मा का कार्य चल रहा था, तो उसके बाद परमात्मा ने निमित्त बनाकर सबको, फिर तो धीरे 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 आज ये 140 देशों में फैल गया, 9000 से जितने सेंटर्स हैं हर जगह। बहुत एक ब्यूटीफुल मॉडल है, इसको स्टडी करने की ज़रूरत है कि कैसे परमात्मा अपना कार्य करते हैं। तो बचपन से हम सुनते आए कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की अति ग्लानि होगी तो परमात्मा को स्वयं इस सृष्टि पर आना पड़ेगा, और जब वो आएंगे तो उनको कोठों में कोई ही पहचानेगा। क्यों कोठों में कोई ही पहचानेगा, सब क्यों नहीं पहचानेंगे? क्योंकि वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, एनर्जी इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए उनके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत है, फिर पता चल जाएगा कि सचमुच वो आया हुआ है और कोठों में कोई उसको पहचान कर, उससे कनेक्ट होकर आत्मरूपी बैटरी को क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। जो आत्माएं सत्युग में थी, शरीर छोड़ा दूसरा लिया, शरीर छोड़ा तीसरा लिया करते गए, जो सत्युग में फुल बैटरी चार्ज थी, वो आज कहां होंगी? जो सत्युग में फुल चार्ज्ड बैटरी आत्मा थी, वो आज कहां होंगी? कहां है वो आज? ओ, इसी बच्चे ने आंसर किया जिसने कल किया था क्या? दूसरा बच्चा है, कौन है? सेम, ये डिफरेंट है ना। हाँ, कहां पर है वो आत्मा? है सारे बच्चा कलयुग में है। वेरी गुड, आपने देखा है बच्चों को आंसर कैसे आते हैं सारे अच्छे। तो वो सारे जो संपूर्ण परफेक्ट आत्मा थी, वो आज कहां है? करते 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 कहां पहुंच गए? कलयुग के एंड पर। कहां बैठे हैं वो? कहां बैठे हैं वो? हाँ, पॉइंट करो कौन सी कुर्सी पर बैठे हैं वो सत्युग के देवता, कहां बैठे हैं? अब उन्हीं आत्माओं को फिर से क्या करना है? अब फिर से क्या करना है? फिर परमात्मा से कनेक्ट करके बैटरी को क्या करना है? चार्ज करना है। और जैसे ही हम ये करते जाएंगे सृष्टि फिर बदल जाएगी। कलयुग से सत्युग बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है, आत्मरूपी बैटरी को क्या करना है? वापस वो 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनाना है। ऐसे से फिर कैसे बन जाना है? ऐसे। तो फिर से बोलो, हम ऐसे थे। कैसे थे हम? ऐसे थे। ऐसे से धीरे 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 कैसे बन गए? ऐसे। अब उतना टाइम नहीं है धीरे धीरे ऐसे बनने का, इसीलिए परमात्मा को आना पड़ता है। सत्युग से कलयुग कितना टाइम लगता है? 5000 ईयर्स। धीरे 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 कलयुग से सत्युग, अब इमीडिएटली, अब तो हार्डली एनी टाइम बचा है। जब आप चित्र देखेंगे साइकिल का, कहीं उसमें एक घड़ी है, वो घड़ी में एक समय दिखाई देता है। कल भी हम कुछ मेहमान थे तो उनको घड़ी दिखाई, तो उन्होंने कहा घड़ी में कितना टाइम बचा है? मैंने कहा अभी तो चित्र की घड़ी देखने की जरूरत नहीं, अब तो सृष्टि पे दिख रहा है कि कितना टाइम बचा है। अब तो सृष्टि रेडी के लिए है, सारा कुछ जो परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, आज साक्षात वो सृष्टि पर हो रहा है सारा कुछ। तो वो समय तो सृष्टि पर अब दिख रहा है। खैर, हमें ये नहीं देखना कि वो सब कब होगा, हमें किस पर फोकस करना है? हमें किस पर फोकस करना है? क्योंकि जो होना है वो तो होने वाला ही है। हमें किस पर फोकस करना है? हमें आत्मारूपी बैटरी को चार्ज करना है। इसलिए हम यहां से जाने के बाद परमात्मा की सिखाई हुई शिक्षाओं को रोज स्टडी करेंगे, उस पावर हाउस से रोज कनेक्शन जोड़ेंगे, आत्मरूपी बैटरी को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे, और इस सृष्टि पर सत्युग को लाने में निमित्त बनेंगे। और जब हम ऐसा पुरुषार्थ करके सृष्टि पर सत्युग लाएंगे, हम कितनी सारी आत्माओं को दुख दर्द से क्या कर देंगे? मुक्त। तो जब हम सुन रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो हमारा ये दूसरा रोल बन जाता है कि हम उनके दुख दर्द को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। हम फिजिकली जाके दुख दर्द नहीं खत्म कर पाएंगे, हम एक देश के दूसरे देश से युद्ध को नहीं रोक पाएंगे, हम तो पड़ोसी और पड़ोसी के झगड़े को भी नहीं रोक सकते। अगर उन्होंने डिसाइड किया झगड़ा करने का, आप कितना भी बीच में जाओ, आप उसका झगड़ा नहीं रोक सकते। लेकिन हमारे पास पावर है, खुद को चार्ज करें, उनको शक्ति भेजें, और सृष्टि की वायुमंडल को क्या करें? एनर्जाइज करें। तो जब जब आपको दुनिया में बहुत कुछ होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन काल में होने वाला है, अगर हम अपनी नॉर्मल एज इस बॉडी की जीते हैं, ये हमारे जीवन काल में होगा, तो जब जब आपको ये दिखेगा तो डरना मत, ये मत सोचना क्या हो रहा है कैसे होगा, याद रखना सृष्टि परिवर्तन हो रही है और परिवर्तन इतना आसान नहीं होता है। तो ऊपर से नीचे जाना आसान होता है, नीचे से ऊपर जाना, और ऊपर से नीचे धीरे धीरे आए, नीचे से ऊपर, तो ऊपर से नीचे सीढ़ी से आए थे, नीचे से ऊपर लिफ्ट में जाना है। इतना टाइम नहीं है, सीढ़ी से नहीं जाना है 5000 साल का, अभी लिफ्ट में जाना है। तो वो समय होता है जब परमात्मा को इस सृष्टि पर स्वयं आकर ये कार्य करना है। तो अब द्वापर युग से जितने मेरे कार्मिक अकाउंट थे, अब सीरियल का लास्ट एपिसोड है, तो सारी कहानियों को क्या करना पड़ेगा, सारी कहानियों को क्या होता है, क्लोजर आना होता है। तो ध्यान रखना है, सारी गांठों को क्या करना है, खोलना है, नई नई गांठें नहीं बनाने। वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपका बच्चा हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपका पड़ोसी हो सकता है, वो आपका कलीग हो सकता है, जो बिना बात के आपको तंग कर रहा है, आपको ऐसा लगेगा। लेकिन कोई भी चीज बिना बात के नहीं हो रही है, जो चीज ऐसे आ रही है, रिपीट करो, जो ऐसे आ रहा है वो ऐसे गया था। तो जो मुझे लगेगा कि मुझे तंग कर रहा है, एक्चुअली तो हाँ कितना अच्छा लग रहा है ना साउंड करके, जो मुझे तंग कर रहा है वो दिखेगा अभी कि वो मुझे तंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली हम ही उसके साथ कुछ गड़बड़ करके आए हैं। इसीलिए इस बार उस गड़बड़ को और बढ़ाना नहीं है। तो सबसे पहले जो हमें तंग कर रहे हैं, याद रखें ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, तो उनसे क्षमा मांगे, मन में बोल के नहीं, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम क्यों क्षमा मांग रहे हैं। अब मन से क्षमा मांगे कि इस आत्मा को मैंने कभी ना कभी तो दर्द दिया है, कभी ना कभी तो दिया, नहीं तो ऐसे मेरे पास आ ही नहीं सकता। तो मैंने कभी ना कभी तो दिया है, उस पुरानी गलती के लिए मैं आत्मा आपसे क्षमा मांगती हूँ। आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। इस पास्ट कार्मिक अकाउंट को हम आज पूरा करते हैं और आज से एक नया कार्मिक अकाउंट शुरू करते हैं, जिसमें मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ दुआएं, शुभ भावना और बहुत सुंदर व्यवहार। इजी करना, इजी है करना, कितना इजी है, बहुत इजी है। अगर आप रोज सुबह अपने आप को एनर्जाइज करेंगे तो बहुत इजी है। नहीं तो ये भी ध्यान रखना है कि अगले कुछ सालों में जब सृष्टि का वायुमंडल नीचे नीचे जाएगा ना, ये सब बातें होंगी सृष्टि पर, तो दर्द बढ़ेगा, तो हम ऊपर जाना भी चाहेंगे तो इतना आसान नहीं होने वाला है। अभी भी देखो आप आ गए, ये आना भी अभी भाग्य है। अभी तो ये नहीं पता नेक्स्ट टर्न होना है कि नहीं, इधर वो वैसे ही कुछ 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 होने लग गया, डीजल नहीं, ये नहीं, वो नहीं। अभी 3 दिन बाद से एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था, 1000 से ज्यादा बच्चे आने वाले, कल कैंसिल हो गया। डीजल नहीं, पानी का टैंकर नहीं, क्योंकि डीजल से वो पानी का टैंकर भी आता है, तो पानी नहीं, कुछ न कुछ चलता रहेगा अभी 10-15 साल ऐसे। तो आ गए, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। अब वापिस जाने के बाद जाना है वो आगे भाग्य बनाना है, क्योंकि जितना वायुमंडल और नीचे जाएगा ना, पुरुषार्थ करना इतना आसान नहीं होगा, दर्द इतना बढ़ेगा सृष्टि पर। इसीलिए प्लीज अपने आप को ट्यूसडे से मत कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतना बड़ा धोखा अपने आप को नहीं देना। सिर्फ ये नहीं है कि आपको परमानेंटली जाना है, आप सिर्फ 3 महीने जाके एक्सपेरिमेंट करके जरूर देख लो कि सच में ये भगवान पढ़ाता है रियली, कैसे एक्सपेरिमेंट। और क्या करना है, 3 महीने के लिए 1 घंटा देना है। 3 महीने 1 घंटा, तो कितने घंटे हुए, 90 घंटे। 4 दिन यहां आने में आप 90 घंटे से ज्यादा लगा चुके हैं, आप 90 घंटे से ज्यादा ऑलरेडी लगा चुके हैं। अब तो सिर्फ हर रोज का 1 घंटा लगाना है। 3 महीने के लिए आप सिर्फ बिलीफ के साथ चलो कि क्या ये सच है, अगर ये सच है तो देखते हैं करके। और 3 महीने आप रोज क्लास जाएं, जो दीदी आपको जो जो सिखाएं उस तरह से वो करते रहें, आपकी प्योरिटी पावर बढ़ती जाएगी, आप अपने घर का शक्ति स्तंभ बनते जाएंगे, आपके घर का वायुमंडल बदलता जाएगा। एक और चीज याद रखनी है, आपके घर में सारे जो रहते हैं वो सब भी तो अपने कर्म करके आए हैं ना, तो इसीलिए इस समय पर कब किसका कौन सा कार्मिक अकाउंट सामने से आ जाता है कुछ पता नहीं, इसीलिए आप देखो ना, दुनिया में अचानक अचानक बहुत कुछ हो रहा है ना, अभी सब ठीक है, अभी ये हो गया, अभी ये ठीक है, अभी ये हो गया, क्योंकि अचानक से कोई भी कार्मे का अकाउंट सामने आएगा। तो हर घर में एक जना तो होना चाहिए जो हमेशा कैसे रहेगा, पावरफुल रहेगा, पीसफुल रहेगा, इंट्यूटिव सोचेगा, और उस कार्मिक अकाउंट को क्रॉस करने का ज्ञान भी देगा, और उस कार्मिक अकाउंट को क्रॉस करने की शक्ति भी देगा। और जिसने परमात्मा को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया होगा, ऐसी एक आत्मा चाहिए हर घर के अंदर कम से कम। तो इसीलिए जाने के बाद एक भी दिन नहीं वेस्ट करना, क्योंकि अभी आपने क्या हुआ, ये 4 डेज ना हमें एक पुश मिलती है, तो 4 डेज में एनर्जी क्या हो जाती है, ऊपर। किस किस को लग रहा है एनर्जी ऊपर हो रही है, मतलब अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, हैप्पी फील हो रहा है, जैसे थे उससे थोड़ा डिफरेंट फील हो रहा है, ये तो पक्की बात है। तो एनर्जी कैसे गई ऊपर, ये ऊपर लाने में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी है बिल्कुल, क्योंकि वायुमंडल था। जब आप वापिस जाएंगे, ऊपर रखना आसान नहीं है, सिर्फ क्यों, क्योंकि वायुमंडल ही क्या, आप वापिस क्या, आप सिर्फ आबू रोड स्टेशन तक पहुंचिए, हवा बदल जाती है, आप गेट के बाहर मार्केट चले जाइए माउंट आबू के, नीचे भी जाने की जरूरत नहीं है, वायुमंडल बदल जाता है, उसका हमारे मन पर असर पड़ता है, हमें गुस्सा आना लग जाएगा जस्ट बिकॉज हमारे आसपास गुस्सा चल रहा था। तो वापिस जाने के बाद इधर रखना इजी नहीं है, इसीलिए हम हर रोज सेंटर जाते हैं, क्योंकि हर रोज 1 घंटा उस वायुमंडल में गए ना, तो फिर ऐसे करते रहना इजी हो जाता है। अगर आप वापस जाने के बाद बोलेंगे अभी तो मैं 4 दिन निकाल के आया ना, अभी तो बहुत काम है, मैं अगले हफ्ते से जाऊंगा, तो अगले हफ्ते तक जो हाथ इधर तक गया था वो जहां आप आए थे उधर तक पहुंच जाएगा, फिर आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप जाने के बाद जाते हैं, आपका एफर्ट लेस है, जा तो आप कभी भी सकते हैं, अगले साल भी जा सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो इन्वेस्टमेंट किया ना 120 घंटे की, उसी को आगे बढ़ाएंगे, वो 90 घंटे लगाएंगे, तो 90 घंटे लगाने के बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ये है। और अगर एक्सपीरियंस हुआ कुछ नहीं है तो नहीं जाना, सिंपल बात है, नहीं जाना। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हमें सब कुछ पता चला, हमें जैसे अभी थोड़े दिन पहले एग्जाम लीक हो गया ना, एक लीक हो गया, ऐसे ही आपके सामने भी अभी एग्जाम लीक हो गया, आपको पता होना चाहिए सृष्टि पर अभी क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे एग्जाम लीक भी हो जाता है और आंसर भी पता होता है कैसे सॉल्व करना है हर एग्जाम को, और टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी साथ देता है, लेकिन हमें बस अपनी तैयारी करते जानी है। बातें तो अचानक, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन बातें तो आएंगे ही, बातें तो अभी आनी ही है। कोविड से ही अगर हम देखें तो अचानक अचानक का पाठ शुरू हो गया, अचानक अचानक बहुत कुछ चल रहा है। तो इसीलिए 1 आवर, 1 घंटा, कल आपने प्रॉमिस किया था ना, हम 1 घंटा अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। घर में बैठकर करने की कोशिश नहीं करना, होने नहीं वाला। आप वही मेडिटेशन घर पे करें, आप वही मेडिटेशन सेंटर पे करें, फर्क, आप वही ज्ञान मुरली घर पे सुने, आप वही सेंटर पे सुने, फर्क, क्योंकि फर्क क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल। और जब हम सेंटर पे जाते हैं ऐसे संगठन भी मिलता है, वायुमंडल भी मिलता है, और कोई ना कोई से हम सीखते हैं वहां पर। ये एक नई जर्नी है, इसके आंसर बाहर दुनिया में नहीं मिलेंगे, इसके आंसर AI पे भी नहीं मिलेंगे, इसके आंसर सिर्फ जो लोग उस जर्नी पर चल चुके हैं ये उनसे ही मिलेंगे कि आपने कैसे किया। आप भी रोज ऑफिस जाते हो, आप भी बच्चों को छोड़ते हो, फिर आपने कैसे 1 घंटा सुबह निकाला, किसी ना किसी से आपको आंसर मिलेगा। आप उसको देखकर इंस्पायर होंगे, इसके घर में तो इतने चैलेंजेस हैं, तो भी ये आ रहे हैं, तो मैं भी आ सकता हूं। संगठन एक बहुत बड़ी पावर है, तो संगठन और वायुमंडल और निमित दीदी जो आपको हर स्टेप पे गाइड करेंगे, वो आपको सेंटर पर ही मिलेंगे। तो यहां से जाने के बाद कितने भी थके हुए हों, नेक्स्ट मॉर्निंग से स्टार्ट करना। तो फिर क्या होगा, फिर इधर से कैसे जाएंगे, आगे आगे आगे। और जाने से पहले अपनी गांठें क्या करनी है, ये क्षमा करना मुश्किल वगैरह ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि हम किसको क्षमा कर रहे हैं एक्चुअली, हम किसी और के लिए कर ही नहीं रहे, ये गांठें खोल रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं, हम अपने भाग्य के लिए कर रहे हैं। अभी भी समय है, सारे कार्मिक अकाउंट को सेटल करो, जितना समय बीतेगा वो करना और मुश्किल हो जाएगा। आप देखें कोविड के बाद एंग्जाइटी बढ़ गई है, पैनिक अटैक बढ़ गया है, डिप्रेशन बढ़ गया है, स्कूल के बच्चों को हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनकी लाइफ में क्या अचानक इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई? नहीं, वायुमंडल कोविड में क्या हो गया? नीचे गया। तो उसका मन की स्थिति पर असर पड़ता है। इस 2025 में कितने बच्चों ने न जीने का फैसला किया? क्या उनकी लाइफ में इतनी बड़ी क्राइसिस थी? नहीं, वायुमंडल दर्द वाला है। और वो वायुमंडल अगर आपको शांत फील करा सकता है, ऐसे ही ऑपोजिट वायुमंडल बहुत परेशान फील करा सकता है। और किसी को वो एकदम से इतना परेशान फील कराता है कि वो कहते हैं मुझे जीना ही नहीं है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसीलिए अपने लिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने परिवार को संभालने के लिए 1 आवर कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं हर आत्मा वो आपकी फर्स्ट लेसन में होना चाहिए था वो कल, लेकिन आप लिख लो। हर आत्मा के पास 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स होते हैं, 5 फोल्डर्स हैं संस्कार्स के। फर्स्ट फोल्डर जिसमें सबसे ज्यादा फाइल्स हैं वो है पास्ट से आया हुआ। पास्ट मतलब सिर्फ लास्ट बर्थ नहीं होता, मेरी जर्नी पर मैंने जितने जितने क्रिएट किए, इसलिए वो वाले फोल्डर में ज्यादा गाने होते हैं, वो हमारे पास्ट के संस्कार हैं। सेकंड फोल्डर पेरेंट्स से मिला हुआ संस्कार, उसमें भी सबसे पहले वो संस्कार कब मिलता है? जब आत्मा गर्भ में होती है, इसलिए गर्भ संस्कार बहुत पावरफुल फैक्टर है। तो जब हम गर्भ में थे वायुमंडल अलग था, दुनिया अलग थी, हमारी जो माएं थी वो परमात्मा को याद करती थी, देवी देवताओं के चित्रों को सामने रखती थी, घर का खाना खाती थी, फोन टीवी नहीं था, तो हम सब पैदा हो गए। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो माएं क्या देख रही हैं सारा दिन? खाना किधर से खा रही हैं? तो बस उसी का असर बच्चों पर पड़ रहा है। तो गर्भ संस्कार एक बहुत पावरफुल चीज है। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा परिवार हो ना जहां एक नई आत्मा आ रही है, उनको जरूर सेंटर पर भेजें। गर्भ संस्कार सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस समय पर अगर कोई मेडिटेशन कर ले तो वो गर्भ में आई हुई आत्मा को बहुत शक्ति मिलती है। तो फिर परिवार से मिले संस्कार, तीसरा एनवायरमेंट से मिले संस्कार, संग का रंग। वो बच्चा कौन से स्कूल में जाता है, कौन से देश में, कौन से शहर में, कौन से एरिया में रहता है, उसके दोस्त कौन से होते हैं। और आजकल सबसे बड़ा संग का रंग है फोन। फोन से संस्कार बन रहे हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड करते हैं। वो जो देखते हैं सुनते हैं उनकी सोच और बोल वैसा बनता जा रहा है। तो चौथा तीसरा फोल्डर है एनवायरमेंट, संग का रंग। चौथा फोल्डर, मेरे ये 3 फोल्डर में कोई भी मेरा संस्कार हो हम चेंज कर सकते हैं विल पावर से। तो फोर्थ फोल्डर है विल पावर, इच्छा शक्ति। आप आज डिसाइड करें आपको ऐसे नहीं ऐसे करना है, आप उस पर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, आपका संस्कार चेंज्ड। और फिफ्थ फोल्डर जो हर आत्मा के पास सेम है, वो फिफ्थ फोल्डर है हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। ये संस्कार तो इस जर्नी पर बने, वो ओरिजिनल फोल्डर में वो 7 संस्कार हैं जो कल हमने देखे थे, प्योरिटी, पीस, पावर, लव, हैप्पीनेस, विजडम एंड ब्लिस, सतोगुणी आत्मा, पवित्रता, शांति, शक्ति, प्यार, सुख, ज्ञान, आनंद। हर आत्मा सतोगुणी आत्मा है। जैसे हर कपड़ा ये वाइट है लेकिन फिर पूरे दिन की जर्नी पर अलग अलग दाग। तो आपके घर जो बच्चा आया है वो अपने पूर्व संस्कार लेकर आया है, वो अपने पूर्व कर्म भी लेकर आया है। हमारा इन्फ्लुएंस है लेकिन आप टू अ लार्ज एक्सटेंट उसके कार्मिक अकाउंट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब उसके कार्मिक अकाउंट के वश उसके जीवन में कुछ आएगा, आपके संस्कार, आपकी शक्ति उसको वो कार्मिक अकाउंट क्रॉस करने में थोड़ी सी मदद देगी। लेकिन जर्नी तो उस आत्मा की अपनी है, हर आत्मा की जर्नी अपनी अपनी है। हम इस फैमिली के साथ तो 100 साल हैं सिर्फ, 100 साल बाद फैमिली फिनिश्ड, उसके बाद में आत्मा गई न्यू फैमिली, उसके बाद में आत्मा गई न्यू फैमिली। हम तो कितनी फैमिलीज देखकर आए ना अभी तक। लेकिन जिस घर में हम रह रहे हैं उसका वायुमंडल हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करता है। तो वो जब कहते हैं कि बच्चे को संस्कार नहीं दिए, उसका मीनिंग है घर का वायुमंडल कैसा बना के रखा। आपके घर के वायुमंडल से बच्चे पर प्रभाव पड़ता है, वो तो है, लेकिन 5 फोल्डर हैं, उसमें से एक फोल्डर है पेरेंट से, या मतलब फैमिली से मिले संस्कार। ओरिजिनल संस्कार सबका हमेशा सेम रहेगा, पवित्रता। अभी देखो, हर आत्मा को शांति चाहिए, हर आत्मा को प्यार चाहिए, हर आत्मा को खुशी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो उसका ओरिजिनल है, फील नहीं हो रहा, तो कहते चाहिए, लेकिन हमें चाहिए नहीं, वो है। हमें उस संस्कार को क्या करना है? इमर्ज करना है, फिर से नया बनाना नहीं है, इट इज देयर, आई हैव टू इमर्ज इट। जैसे मेरा शांति का संस्कार है, लेकिन मैंने ऑन दिस जर्नी गुस्से का संस्कार क्रिएट कर लिया, अब मैं हर रोज प्रैक्टिस करूंगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांति का सा, तो धीरे धीरे कल मैं 10 में से 2 बार गुस्सा नहीं करूंगी, अगले महीने मैं 10 में से 5 बार गुस्सा नहीं करूंगी, तो मेरा शांति का संस्कार एक्शन में आने लग गया ना, और धीरे धीरे वो गुस्से का संस्कार, इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, अभी नहीं हो जाएगा, धीरे 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 फिनिश्ड। ओरिजिनल 7 संस्कार वापिस आने हैं, ये है राजयोग। राजयोग मतलब बाकी सारे गाने बंद, और उसी फोल्डर को, प्लेलिस्ट को ऑटो मोड पे डाल देना है, और वो ही 7 गाने चलने चाहिए हर कर्म के अंदर। लेकिन उसके लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। चलें, सीधा होकर बैठें, बस 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। दीदी आएंगी स्टेज पर, ये टाइम 1 मिनट आपका अपना है। आपने अपने कार्मिक अकाउंट को चेक करना है कि आपको कौन सा चेंज करना है, कौन सी गांठ को खोलना है। आपने डिसीजन लेना है, आपने मंगलवार के बाद अपनी जर्नी को कैसे लेके चलना है। ये 1 मिनट बिल्कुल साइलेंस में हमारा अपना है, उठना नहीं है।